اب اس کے مقابلے میں ایک اور گروہ کا ذکر آ رہا ہے. خوبصورت ترین آیت ہے یہ, اور یہ آیت اگر کسی نے, اگر آپ کو یہ ایڈمنز آج کچھ اور بھی قاریوں کی آواز میں سنا سکیں, یہ آیت اگر کوئی خوبصورت آواز میں پڑھے نا تو آپ کے آنسو نہیں تھمیں گے. یہ اتنی پیاری آیت ہے, یعنی جب بھی میں اس کو سنتی ہوں نا, کہیں کوئی اچھی پڑھ رہا ہوتا ہے اس کو, یہ ایسے لگتا ہے دل پہ اتر رہی ہے. یہ کیا آیت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, ان الذین قالوا ربنا اللہ. یہاں پہ آپ تھوڑا سا دیکھ رہے ہیں, تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے ایک, یعنی الفاظ ڈفرینٹ ہے. ان الذین آمنوا نہیں کہا گیا, ان الذین اسلموا نہیں کہا گیا, جو لوگ اسلام لے آئے, جو لوگ ایمان لے کر, نہیں, جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے, انہوں نے ڈکلیئر کیا ہمارا رب اللہ ہے. آپ صرف اس کو مکی کانٹیکسٹ میں رکھ کے دیکھیں, وہاں پہ یہ بات کہہ دینا کہ میں اسلام لے آیا ہوں, میرا رب اللہ ہے, یہ سمجھنے بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالنے والی بات تھی. اس کے بعد اس بندے کی تو زندگی ہی اندھیر ہو جاتی تھی, یعنی اتنا اس کے اوپر ٹارچر ہوتا تھا, اتنا اس کے اوپر ظلم کرتے تھے. یہ تو ایسے تھا کہ دعوت دینا, ظلم کو دعوت دینا تھا, گھر والے اس کو چھوڑ دیتے تھے, گھر والوں کی طرف سے ہی سب سے زیادہ ٹارچر ہوتا تھا. چاہے کوئی آزاد ہے, غلام بیچارے کی تو بالکل ہی کوئی نہیں حیثیت اس معاشرے میں تھی, لیکن آزاد کے ساتھ بھی وہ حال کرتے تھے ان کے گھر والے ہی, کہ جو ان کی مثالیں آپ پڑھتے ہیں کہ جو مصائب صحابہ کرام نے سہے, اٹ واز ناٹ ایزی. پہلے اس کانٹیکسٹ میں سمجھیں, اور اس کے بعد ہمیں اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے ربنا اللہ, کہ اس نے علل اعلان کہہ دیا میرا رب بس اللہ, اب جو مرضی ہو جائے, ہوتا ہے تو ہوتے رہے, جس نے جو کرنا ہے نا میرے ساتھ کرے پھر. اور یہ بھی پتہ چلا اس سے, ڈکلیریشن, منہ سے بولنا, یہ نہیں کہ ہمارے تو دل کے اندر تو ایمان ہے بس ٹھیک ہے, اللہ کو تو پتہ ہے نا ہمارا ایمان ہے, نہیں, منہ سے بول کے بتاؤ. اس لیے کہ منہ سے بول کے بتانے سے پتا چلے گا کہ واقعی تم اس کے اوپر کتنے یقین رکھتے ہو کہ اب تمہیں پرواہ نہیں رہی ہے رب کون ہوتا ہے, جو میرا خالق ہے, جو میرا مالک ہے, جو مجھے رزق دیتا ہے, جو میری حفاظت کرتا ہے, جو مجھے پالتا ہے, میری پرورش کرتا ہے, مجھے ہدایت دیتا ہے, وہ میرا اللہ ہے بس. یہ بات کتنی بڑی ہے, آپ اس کی ڈیپتھ میں جا کے سوچیں, یہ کتنی بڑی بات ہے جو اپنے منہ سے کہہ رہے, تو میرا تو سب کچھ اللہ ہے. تو اب کیا جو بندہ ایسا کہہ رہا ہوگا وہ بے نیاز نہیں ہو جائے گا کہ مجھے نہیں اور کسی کی پرواہ, مجھے نہیں کسی کا ڈر, میرا رب تو اللہ ہے. لیکن یہ کہنا کافی نہیں ہے, یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ میرا رب اللہ ہے. پھر کیا کرے, پھر وہ کیا کرتا ہے, ثم استقاموا, یہ ہے مشکل ترین بات. پھر جم گیا اس کے اوپر, پھر متزلزل نہیں ہوا, پھر یہ نہیں کہ آج جذبات میں آ کے تو کہہ دیا ربنا اللہ, اور کل کو جب کوئی آندھی طوفان آئے, کوئی مصیبتیں آئیں, کوئی مسئلے آئے, تو پھر گئے, یا پھر اس کے مطابق اپنی اسٹریٹجی کر لی. یہ ایسا نہیں ہے, قائم ہو گیا, جم گیا. استقامو کیا آتا ہے, کسی چیز کو سیدھا کھڑا کر دینا کہ اس کے اندر ذرا بھی ٹیڑ نہ ہو, کبھی ادھر کو جا رہی ہے, کبھی ادھر کو جا رہی ہے, ایسی نہ ہو, فرم ہو, فرم. ٹھیک ہے, ایک بات یہ سمجھ آ گئی. یہ اس کے بہت زیادہ اس کے اندر ڈیپتھ ہے, اس کے اوپر تو اتنی تفاسیر ہوئی نہیں ہے, میں تو اس کو پورا 3 گھنٹے بھی اس آیت کو کرتی رہوں تو کام ہے اس کے لیے. تو اس لیے ذرا یہ آیت اتنی خوبصورت ہے نا کہ اس کی ڈیو ریسپیکٹ اس کو دینی چاہیے, ہم متوجہ ہوں کم از کم, حق تو نہیں ادا ہو سکتا. تو اور استقامت کیا ہے, عملی ثبوت دینا, عمل سے بتانا کہ واقعی جب میں نے کہا ہے ربنا اللہ تو میرا عمل بھی ویسا ہے یا نہیں. آج ہمیں پوچھے نا تو ہم کہتے ہیں اللہ کی خاطر ہم جان بھی دینے کو تیار ہیں, ہم ایسے کرنے کو تیار ہیں, وقت آ جائے تو میں تو پتہ نہیں کیا ثابت کر دوں گی, کہ پتہ نہیں ہم کیا کیا زمین آسمان کے کلابے ملاتے ہیں. ذرا سا اللہ نے جھٹکا دیا, کوئی ایسا مسئلہ آ گیا, اللہ معاف کرے, کوئی بیماری, کوئی اور ایسی مصیبت آ گئی, کوئی گھر کے اوپر کوئی ایسا آزمائش آ گئی, پھر دیکھو وہ یاد ہی نہیں ہے کہ میرا رب اللہ, سب گیو اپ کرنے کو تیار ہیں, کمپرومائزز کرنے کو تیار ہیں. عمل میں کیا آیا, اس کا مطلب عمل تو ثبوت نہیں دے رہا. استقامت میں یہ عمل سے ثبوت دو, پروو اٹ, और हम सूरह अनकबूत में पढ़ चुके हैं, तुम्हारा ला इलाहा इल्लल्लाह कहना काफी नहीं है, अल्लाह तुम्हें आजमा के देखेगा। तो इसका मतलब आजमाइश आएगी, पता चलेगा तुम्हारा अमल क्या है, इस दावे का इम्तिहान अल्लाह लेगा। साबित करो, जो साबित करके दिखाए हमारा रब अल्लाह है वाकई वो ही इस्तकामत वाला है, ये नहीं कि कॉल कुछ अमल कुछ। तो इस्तकामत में क्या आ गया, नंबर वन ये इंसान वाकई अमली तौर पे साबित करके दिखाए, अल्लाह के अहकामात पे चल के दिखाए इखलास के साथ और जो नबी का तरीका उसके मुताबिक, ठीक है। तो इस्तकामत में इखलास होना जरूरी है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका होना जरूरी है। नंबर टू बात क्या, इस्तकामत वक्ती अमल नहीं है, हमेशगी का है। आज कर लिया जज्बात में आके कुछ अरसे बाद छोड़ दिया, ये इस्तकामत नहीं होती। जैसे हम कहते हैं ना अल्लाह ताला आपको इस्तकामत अता फरमाए, जब हमारी यही दुआ होती है जब कोई रजिस्टर करता है अल्लाह आपको इस्तकामत दे। क्योंकि अक्सर लोग आज जी बड़ा 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 अच्छा दर्स हुआ, फॉर्म भी फिल कर दिया, उसके बाद पूछो तो दो लेसन के बाद कहाँ गायब हैं कुछ पता ही नहीं। इस्तकामत नहीं है आज हमारे अंदर। आप देखें कितने लोग शुरू करते हैं कोर्स को और ग्रेजुएट कितने करते हैं, उसी से आपको पता चल जाए हमारी इस्तकामत की हालत क्या है। दीन के मामले में हमारी इस्तकामत नहीं है, बाकी चीज़ों में इस्तकामत है। जॉब करते हैं तो टिक के करते हैं, घर के कामों में भी टिक के करते हैं, लेकिन जहाँ पे दीन का मामला आ जाता है वहाँ पे, क्योंकि जिसकी जितनी अहमियत होगी उतनी इस्तकामत होगी ना। तो आज अगर कहीं दर्स सुन लिया तो बस इतना आज जोश आ गया कि बस, अल्लाह को ऐसा नहीं चाहिए कि आज इतने जोशीले तो बस पता नहीं क्या कर देंगे, कल को क्या है सारा जोश झाग की तरह बैठ गया कुछ भी नहीं है। तो कुछ अरसे की नेकियां नहीं चाहिए, सारी जिंदगी की चाहिए अल्लाह को फरमाबरदारी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये आयत की तिलावत फरमाई तो फरमाया, बहुत से लोगों ने ये बात कही कि हमारा रब अल्लाह है, लेकिन फिर अक्सर लोगों ने अपने अमल से इसका इनकार कर दिया। ये जो बात अभी हुई है ना कि अमल से साबित करके दिखाना है और सारी जिंदगी साबित करके दिखाना है, और फरमाया जो इसी पर मर गया वो है जो इस्तकामत इख्तियार करने वाला है। तो हमारा कब ये इम्तिहान खत्म होगा, रबुनल्लाह का इम्तिहान कब खत्म होगा, जब मरेंगे इस पे, जब मौत इसी पे आएगी। ऐसे नहीं है कि आज कहा और कल कुछ, कल कहा तो परसों कुछ, और दो दिन चले फिर चार दिन फिर रुक गए, फिर और दो दिन चले फिर कुछ, अब हमें मोटिवेशन चाहिए, हमें ऐसे चाहिए, नहीं बस चलते ही चले गए। आप देखते नहीं सहाबा की जिंदगी, वो चलते ही चले गए जब तक मौत नहीं आ गई। आप देखते हैं उन्होंने कैसे साबित किया इस्तकामत क्या होती है, कैसे साबित किया हजरत बिलाल ने, हजरत सुमैया ने ऐसे साबित किया था। और अल्लाह ने ये देखना है कि मौत किस हालत में आई है, ये नहीं देखना कि वंस अपॉन अ टाइम उसकी जिंदगी में एक फेज आया था जिसमें वो नेक हो गई थी, जिसमें उसने बड़ी फरमाबरदारी की, फिर वो पलट गई। आप देखते हैं बाज लोग कुरान की तरफ आते हैं, अल्लाह माफ करे, कुरान की तरफ आते हैं फिर उसके बाद क्या होता है, जिंदगी तेजी से बदलती है, चेंज आने लगता है, हालत बदल गई, बच्चों का हाल भी बदल गया, घर भी बदल गए, कहाँ बाल खुले घूमती थी लेकर कहाँ पे हिजाब भी आ गया, अबाया भी आ गया, नकाब भी आ गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर कुछ मजबूरियां आ गई, कुछ मसले आ गए, कुछ ये आ गया, कुछ अपनी जो पिछली कंपनी थी उसका दबाव आ गया, और कुरान से आहिस्ता आहिस्ता दूरी होने शुरू हो गई। और फिर क्या हुआ, जो हालत बदली थी वो वापस पलट गए, जहां से चले थे वहीं लौटने लगे, पहले नकाब उतरा फिर अबाया उतरा फिर हिजाब भी ढीला होने लगा। उनको शैतान ने यह सुझा दिया था, एक दफा कुरान तो पढ़ लिया ना, बस फरवत पढ़ने की क्या जरूरत है, एक दफा कोर्स कर नहीं लिया तुमने, तो नहीं ये उम्र भर का सफर है, इसमें अल्लाह ने देखना है कौन जम गया इस रास्ते पर, फिर चाहे आंधी आए तूफान आए झक्कड़ चले अपनी जगह से नहीं हिले। देखिए ना आप मुझे ये बताएं, आपकी आप अपनी किसी को फ्रेंड कहती हैं, बहुत मेरी बेस्ट फ्रेंड है, जिस वक्त कोई मुश्किल वक्त आए तो वो मिले ही ना, वो कहे मैं तो बिजी बहुत, तो आप कहेंगे मैंने ऐसी फ्रेंड को क्या करना। अल्लाह ताला ने देखना है कि ये आंधी तूफान में जमे के नहीं जमे, ये आंधी तूफान के अंदर खड़े रहे या नहीं खड़े रहे। जो लोग उस वक्त नहीं चल सके तो फिर उनका क्या है, वो कैसे औलिया अल्लाह हो सकते हैं, वो कैसे अल्लाह के दोस्त बन सकते हैं। ऐसे ईमान की कोई अहमियत नहीं है, ये बस जिस वक्त अच्छे हालात हैं उस वक्त तो बस बड़े अच्छे हैं, जिस वक्त हालात जरा मसले हुए, जरा अल्लाह ने हिलाया, किसी इम्तिहान में डाला, जरा प्रेशर आया, जरा लोगों ने बातें बनाने शुरू कर दी, जरा लोग मजाक करने शुरू हो गए, या दोस्तें साथ छोड़ने शुरू हो गई, हमने नहीं अब तुम तो भाई बहुत चेंज हो गई हो, अब नहीं हम तो, अब वो उन्होंने अपनी पार्टियों पे हमें बुलाना शुरू कर दिया, पहले हमारे बगैर कोई पार्टी होती नहीं थी, अब वो बुलाती ही नहीं है, फिर उसके बाद कोई साथ देने वाला नहीं है, सारा खानदान एक जैसा है और मैं अलग से हूं, तो फिर ये नहीं मेरे से हो सकता। तो फिर हाँ, जो चार दिन किया था वो भी कोई फायदा नहीं है उसका, क्योंकि जब इस्तकामत ना हो, आप मुझे बताएं किसी चीज में भी आप लोग उठा ले, मसलन है आप मिसाल के तौर पे आप खाना बनाती, आप खाने में आपके पास इस्तकामत नहीं है, मसलन आप खाने को आधा बनाया और अब मैं बोर हो गई हूँ, अब ऐसे नहीं अब तो मैं थक गई हूँ, अब वहीं पर छोड़ के आप चली जाती, वो खाना खाने के काबिल होगा? नहीं होगा, किसी काम का नहीं, वो बेकार है, आधा कच्चा आधा पक्का, जब तक उसको फुल फ्लेज एंड तक ना पहुंचाए उस वक्त तक उसको उसका कोई यूजेज नहीं है। दुनिया की बातों में हमें ये बात समझ आती है ना, तो दीन में भी जब तक मरते दम तक इंसान इसके ऊपर चल के ना दिखाए, इस पे कायम रह के ना दिखाए, उस वक्त तक उसका कोई ईमान नहीं है। बाज लोग पूरी जिंदगी ईमान पे रहते, एंड पे आके वो पलट जाते, 70 साल इबादत करते हैं, एंड में आके कुछ और हो जाते हैं। तो ये वो लोग हैं जो चलते रहते हैं, चाहे कोई मजबूरी आ गई है, चाहे कोई रास्ते में कोई रिश्ते उसके पैर की बेड़ियां बन रहे हैं, चाहे इस रास्ते के अंदर कोई ऐसे रुकावटें डाल रहा है, अब शोहर खुश नहीं है, अब माँ बाप ताने दे रहे हैं, तुम तो भले अच्छी बली थी, पता नहीं तुम्हें क्या हो गया, अब बच्चे भी कुछ बातें बनाने लग गए हैं, अब जो दोस्त है बाप है वो भी नहीं पसंद कर रहे, तो ये जब सारी इतनी सारी ऑपोजिशन होती है, उसमें कोई इंसान खड़ा रहता है या गिर जाता है, इस चीज का इम्तिहान है, यही इस्तकामत है कि वो तब भी खड़ा रहे, उसका ईमान पहाड़ों जैसा होना चाहिए, जिस पर हवाएं आती हैं ना, देखिए कितने तूफान चलते हैं, पहाड़ तो नहीं अपनी जगह से हिलते, वहीं खड़े रहते हैं, हवा लगती रहती है, हवाएं दम तोड़ जाती हैं, पहाड़ नहीं हिलता, लेकिन जो कमजोर कमजोर पौधे होते हैं उनका क्या हाल होता है, वो बस जरा सा झक्कड़ चला तो वो गिर के वो जमीन पर पड़े होते हैं। अल्लाह को ऐसा नहीं ईमान चाहिए, ये तो ऐसे ही है कि बस जैसे आपने दूध के नीचे आग जलाई, वो एक उबाल सा आया, ऐसे लग रहा है कि जब दूध निकल के तो बाहर सारा गिर जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या होता है, जो ही आप फ्लेम बंद करते हैं तो सारा नीचे चला जाता है, झाग बैठ जाती है और लगता है कि कभी इसमें कोई उबाल आया ही नहीं था। अब इंसान नया नया दीन की तरफ आता है, कुरान भी पढ़ता है, ये तो एक समझने वो हीट अप होता है, वो जोश आता है, ऐसे लगता है पता नहीं कहां तक पहुंच जाएगा, कुरान से दूर जाने लगता है सारा जोश खत्म, सब आपने वो आग बंद कर दी खत्म, इसी तरह कुरान से दूर हुए खत्म, इस्तकामत ही नहीं रहती, इस्तकामत देने वाला भी ये कुरान है। तो ये मुस्तकिल मिजाजी जरूरी है, ये आप ये दो पारे पढ़ के चार पारे पढ़ के भाग जाना, उसके बाद अच्छा अब नया कोर्स शुरू होगा ना तब हम आएंगे, फिर वो नया कोर्स भी शुरू हो जाए, फिर उसके अंदर 2-4 पारे अब 6 कर लिया तो उसके बाद फिर कोई मजबूरी आ गई, नहीं नहीं अब नहीं हम कर सकते, अब हम और नया कोर्स आएगा ना, जब नया कोर्स स्टार्ट करेंगे ना आप तब हमें बता देना। ये कौन सी तरीका होता है पढ़ने का, ये कमी है हमारे अंदर, इसी चीज को हमने फिक्स करना है, इस्तकामत के बगैर कुछ नहीं है, कि मेरे घर में कुछ भी हालात हो, कोई भी ऐसी चीज हो गई, कभी मेहमान आ गए हैं, कभी शादी है, कभी कोई गमी है, कभी कोई और चीज है, उसमें भी मैं साबित कदम रहूं, चलती रहूं। इसी तरह नॉट ओनली दिस के कोई घर के घरेलू हालात होते हैं, बाज दफा यानी जो जिसको आप कहेंगे कि हुकूमतों की तरफ से मुल्कों में ऐसी कवानीन नाफिज हो जाते हैं या ऐसी कोई चीजें आ जाती हैं जो इक्तदार वाले हैं उनकी तरफ से कोई सख्तियां आ जाती हैं कि लोग भाग जाते हैं, ये भी इस्तकामत की कमी है। यानी आपने खबरों में कोई बात सुन ली, कोई वाकया सुन लिया, जी फलां मुसलमान को सताया गया, अब क्या हो गया, सताया गया किसी का हिजाब खींच दिया जी, तुम्हें पता चला वो हिजाब खींच दिया वहां पे, लो जी अब से तो हमने हिजाब लेना ही नहीं, किसी को ना पता चले हम मुसलमान हैं। अगर पता चल गया तो कहीं ये मसला ना मेरे ऊपर आ जाए, तो तुम्हें तो डिक्लेयर करना है रब्बुन अल्लाह, लोग देखे तो उनको पता चल जाए इसका रब अल्लाह है, ये एक अल्लाह को मानने वाली है, ये पता चलना चाहिए। हम इसको छुपाते हैं किसी को पता ना चले, मर्द छुपाते हैं कहीं दाढ़ी रख ली तो लोगों को पता चल जाएगा मुसलमान है, औरतें छुपाती हैं हिजाब ले लिया तो लोगों को पता चल जाएगा मुसलमान है। सबसे पहली बात ही डिक्लेरेशन है, उसके बाद उस पर जम जाना है। ये नहीं कि हालात ऐसे हुए तो वैसे हो गए, हालात अच्छे हो गए तो फिर अच्छे हो गए, ये नहीं कि जरा जरा सी चीज हमें हिला के रख रही है। अब कोई जॉब के ऊपर किसी ने कुछ कह दिया तो अब अगले दिन हमने कहा नहीं नहीं अब पता ना चले, अब देखे ना मुझे जॉब पे बड़ी मुश्किल हो रही है तो इसलिए ये मैं अपनी मुस्लिम आइडेंटिटी को छुपाती हूँ, फिर मैं मुझे ना मैंने ऐसा नाम रखना है ना बच्चों के हम ऐसे नाम रखे, क्योंकि अगर इनको इस सोसाइटी में रहना है तो ऐसे ही नाम होने चाहिए पता ही ना चले कि मुसलमान है। मोहम्मद अहमद तो नाम बिल्कुल ही ना रखो, ऐसे नाम रखो कि जो यानी इनके अंदर ब्लेंड इन हो जाए तो किसी को नाम लेते हुए भी नहीं समझ आएगी कि ये मुसलमान है। ये फिर क्या इस्तकामत है बताएं। आज ठीक है हम मानती हूं कि मुसलमानों के हालात दुनिया में थोड़े से मुश्किल हैं, थोड़े से इसलिए कह रही हूं कि अगर मक्की दौर से आप कंपेयर करें तो शर्म आती है कहते हुए कि हमें कोई मुश्किल है, शर्म आती है ना कि क्या उनके ऊपर हालात गुजरे और हम किस बातों की फरियाद कर रहे हैं। एयरपोर्ट पे मुझे रोक लिया, अच्छा जी उसने मेरे से पुलिस वाले ने रोका तो उसने मेरे से आईडी मांग लिया, मुझे डिस्क्रिमिनेशन हुई क्योंकि मैं मुसलमान हूं ना, मैं फलाने स्टोर पे गई थी डिस्क्रिमिनेशन हो गई मेरे से, और मैं फलानी जगह पे गई थी तो कुछ लोगों ने ना कोई बातें बोल दी, कोई कमेंट्स दे दिए मेरे ऊपर, ये है हमारी मुश्किलात। इनको मुश्किलात कहते हुए भी शर्म नहीं आती हमें, देखिए कि सहाबा के साथ क्या हुआ फिर देखिए कि हम किस चीज को कह रहे हैं। आपको पता है कि कई लोगों ने इसी मुल्क में कितनी मुश्किलात काटी, जैसे जो काले लोग हैं इनको इसी मुल्क में उनके साथ कितनी डिस्क्रिमिनेशन हुई, आप ब्लैक हिस्ट्री निकाल के देख ले, यहूदियों के साथ हिटलर ने क्या किया था, जापानियों के साथ वर्ल्ड वॉर टू के बाद में उस वक्त इनको कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में डाल दिया गया था विद फैमिलीज, तो लोगों ने सहे है ना मजालिम आज तक, लेकिन किसी ने अपने रंग की वजह से सहा, किसी ने अपने मुल्क की वजह से, किसी अपने खास मुल्क के होने की वजह से कहा सहे ये बातें, किसी ने अपने मजहब की वजह से सही, क्या मुसलमान अपने दीन की वजह से सह नहीं सकता, क्या मुसलमान अपने दीन की वजह से कोई बात नहीं सुन सकता आज। तो इस्तकामत ये अल्लाह को चाहिए और इसका इम्तिहान है कि इस्तकामत किस में है। ला इलाहा इल्लल्लाह की बैठ के तस्बीहां कर लेना ना ये बहुत आसान है, ला इलाहा इल्लल्लाह को अपनी जिंदगी में शो करना मुश्किल है कि दिखाओ कि तुम एक कलमा पढ़ने वाले हो। ये अल्लाह को नहीं चाहिए कि हमने अपने घरों के अंदर तो आयतें और सूरतें जो है ना वो दीवारों पे लगा ली, ये नहीं मैं कह रही गलत है, लेकिन बस वो लगा ली, गाड़ी के अंदर हमने एक सफर की दुआ लगा ली है और हम एक साल में एक एक दफा कोई कुरान अपने घर में दर्स करा लेते हैं या कुछ, चलो जी हम बहुत अच्छे मुसलमान हो गए, ये नहीं चाहिए। ये चाहिए कि मुस्तकिल तौर पर दिन और रात में तुम मुसलमान बन के दिखाओ, तुम्हारा कहीं नुकसान हो रहा है किसी जगह पे, तुम्हारा कोई अंदेशा है कि यहां पे नुकसान हो जाएगा तुम्हें, तब भी तुम अपना नुकसान बर्दाश्त कर लो, लेकिन ये अपने ईमान का सौदा ना करो कि कोई बात नहीं अल्लाह ने जो हुक्म दिया उसका तो खैर है, कोई बात नहीं बाद में तौबा कर ले, ये बस मेरा नुकसान ना हो जाए। लोगों का इस्तकामत का पता ही कब चलता है, जब रुकावटें आती हैं, जब दुनिया की ख्वाहिशात आगे होती हैं, दुनिया के फायदे आगे आते हैं, किसी नुकसान का अंदेशा होता है, या फिर खुशियों और गमों में पता चलता है कि ये कितना इस्तकामत रखने वाला है, कि मैं खुशी के मौके पे आपे से बाहर तो नहीं निकल जाती, या मैं वाकई मैं नजर आ रही होती हूँ रब्बुन अल्लाह, गम के मौके पर क्या होता है। कितनी दफा हम यहां पे आके ही मार खा जाते हैं, डंडी मार देते हैं। अगर हम इन वक्तों में जो के हमारे अप्स एंड डाउन्स हैं लाइफ के, उनमें नहीं हम साबित कर सकते तो और किस वक्त साबित करना, उस वक्त बाकी तो जिंदगी ऐसे स्ट्रेट चल रही है तो चलती रहेगी। तो असल मसला ये कहना कि बस मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया या रब्बुन अल्लाह, ये बात नहीं है। असल मसला ये है कि जम के दिखाया या नहीं, जम के दिखाओ। ठोकरें खानी पड़े खा लो, ताने सुनने पड़े सुन लो, लोग हंसते हैं हंसने दो उनको। किसी ने कहा मैं तो ब्यूटी पार्लर का काम करती हूँ किसी जगह पे, किसी स्टोर में, तो मैं वो क्या ये मेकअप करती हूँ, तो मेरे से वो गैर मुस्लिम औरतें मेकअप नहीं कराती मेरा शायद हिजाब देख के, तो मैं अब हिजाब उतार सकती हूँ फिर इस बात की वजह से, क्योंकि देखिए मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। ये तो हमारे हाल है इस्तकामत के, जरा जरा सी बात पे हम डर जाते हैं। अभी कुछ हुआ नहीं होता, हम पहले ही सहम में बैठे होते, हम पहले ही छोड़ने को तैयार हैं बैठे हुए कि हम किस वक्त बस छोड़ दें। सोचिए हमारी ग्रिप कितनी लूज है कि हम बस दूर है ना, अभी कोई चीज भी दूर तो हम वहां की चीजें सुन के भी कहते हैं आजकल हालात वैसे बड़े खराब है, वैसे इस तरह से आजकल नहीं ये चल सकता, ये सब आराम छोड़ के बैठ जाते हैं सब कुछ। तो ये नहीं अल्लाह को चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये कोई ईमान नहीं है। जुबान से कह भी दिया ला इलाहा इल्लल्लाह तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ नहीं। सारी अपनी जिंदगी, अपना अपने दिन और रात, अपनी खुशियों और गम, अपने हर तरह के उसके अंदर मुसलमान बन के दिखाओ, तब इस्तकामत। जब तुम ये बन जाओगे ना, जब तुम ये कर लोगे, और मैंने आपको क्या बताया इस्तकामत की रुकावटें ये हैं, इस्तकामत पे कायम रखने वाली चीज कौन सी है, सबसे पहले दुआ किया करें अल्लाह इस्तकामत देना, दीन पे इस्तकामत देना, नेकियों में इस्तकामत देना, अपनी इताअत पे इस्तकामत देना, मरते दम तक यानी इस पे रखना। और कुरान ये इस्तकामत देता है, इंसान को हिलने नहीं देता। आप देखते हैं एक दफा आप सुनते हैं तो फिर उसके बाद कुछ सीधी होने शुरू हो जाती है हमारी सोच भी और अमल भी, फिर उसके बाद एक हफ्ता ही गुजरता है तो हमारा असर खत्म होने लगता है। आप सोच लें अगर गैप आ जाए, हम सोचे बस ठीक है हमने पढ़ लिया, और वही जैसे मैंने आपको उबाल की मिसाल दी, उबाल आ रहा है अभी तो वह जोश है, अभी आपने एक खास टेम्परेचर पर रखा है वो बॉयल होता जा रहा है, लेकिन अगर आग बंद कर दी तो ठंडा हो जाएगा बिल्कुल। इसको नहीं छोड़ना, ये अल्लाह की रस्सी है, ये इस्तकामत देगी। तो तुम इस्तकाम हो फिर क्या होता है, अल्लाह ताला फरमाते ततनज्जलु अलैहिमुल मलाइकातु, उतरते हैं उन पर फरिश्ते। कब उतरते हैं ये फरिश्ते, मुफसरीन कहते हैं तीन औकात में उतरते हैं इनके ऊपर फरिश्ते। तीन औकात कौन से, मौत के वक्त, अभी मरा नहीं है लेकिन बिस्तरे मर्ग पे उस वक्त, नंबर टू कब्र में, और नंबर थ्री जब हशर में उठता है उस वक्त उसके ऊपर फरिश्ते उतर, ततनज्जलु में, ततनज्जलु है, तनज्जलु नहीं है, है ना, ततनज्जलु में जब आ रही एक तकरार सी आ रही है ना, माना भी इसी तरह है, यानी पैदर पे उतरते हैं, जब जब जरूरत होगी उतरते हैं, उतरते ही जाते हैं। आप सोचें अल्लाह अकबर, अल्लाह हमें ऐसी मौत देना कि जो जब हमारे हम भी दुनिया से जाने लगे तो हमारे ऊपर फरिश्ते उतरे। आप इस जिंदगी के अंदर तो नहीं देख सकते, लेकिन मरने वाला जिस वक्त बिस्तरे मर्ग पे होता है उस वक्त उसके घर वाले करीब खड़े हुए हैं, वो रो रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं और घर वाले रो रहे हैं और सब एक गम में, और उसको पता चल गया कि अब मेरा जाने का टाइम आ गया, अब नहीं मैंने बचना, अब बस, और अगली मंजिलें उसको नजर आनी शुरू हो गई, उसको महसूस हो रहा है कि दिस इज माई लास्ट टाइम। उस वक्त सोचें कि उसके ऊपर क्या हालत होगी ना, कि ये जाहिर है खौफ तो होगा ना, जितने मर्जी इंसान नेकियां कर ले। आप सोचें बच्चे कभी अपने एग्जाम करके आते हैं ना, तो फिर उनसे पूछे कि टेस्ट कैसा हुआ, तो कहते हैं आई थिंक आई डिड गुड बट आई डोंट नो, मुझे लगता है कि मैंने ठीक किया लेकिन मुझे नहीं पता, ये बच्चे कहते हैं। अब देखिए एक बंदा जितनी भी नेकियां कर ले, हर सर्टेनिटी तो किसी के पास नहीं ना, 100% ना मैं ना आप, कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं कह सकता नहीं जी हमारा तो बहुत अच्छा है, हमारा तो सब वहां पे ठीक ठाक। अब उसको खौफ होगा, हाय अब पता नहीं मेरा क्या बनता है, हाय अब क्या होगा, अब तो मैं जाने लगी हूँ, अब क्या होने लगा। अब देखिए ये छोटी छोटी चीजों पर हमें हो जाता है कि हम एयरपोर्ट पर उतरने लगे, हाय अब पता नहीं क्या होगा, अब इमिग्रेशन वाले रोक ना लें, अब ऐसे ना हो जाए, छोटी छोटी चीजों पर कितने पैनिक हो जाते हैं। और वो कि भाई अब तो मैं दुनिया से ही जाने लगी हूँ, सोचे वो वक्त कितना ज्यादा खौफ का होगा। उस वक्त एकदम वो देखता है तो फरिश्ते आ रहे हैं, और फरिश्ते आ रहे हैं और इतने खूबसूरत लिबास में, खूबसूरत चेहरों वाली हैं, जैसे नसाई की हदीस है ना कि जब मोमिन की मौत का वक्त आता है तो उसके पास रहमत के फरिश्ते आते हैं सफेद रंग के रेशम के साथ, और फिर वो आके क्या कहते हैं, ए जान तू निकल जा अपने रब की रजा की तरफ चल, तेरा रब तुझसे राजी और तुझे राजी कर देने वाला है, तू निकल उस रब की तरफ जो तेरे साथ नाराज नहीं है, तुझसे राजी है। अब देखें जो जिसको ऐसी बात पता चल गई, निकल अपने रब की रहमत की तरफ, निकल अपने रब के इकराम की तरफ, जिसको ये तसल्लियां मिल जाएं, वो तो फिर उसकी तो क्या वो होगी, उसको तो ये नहीं रहेगा कि कौन रो रहा है और कौन क्या है, वो तो कहेगा मुझे बस ले चलो फिर तसल्ली मिल गई, आगे तो मेरा बड़ा अच्छा है सारा कुछ, अच्छा अल्लाह मेरे से राजी है। वाकई जिसको राजी करने के लिए उसने मेहनत की हो, जिसने जिंदगी भर मेहनत की हो कि मेरा रब राजी हो जाए, उसकी तो खुशी की इंतहा ही नहीं रहनी, वो तो कहेगा मुझे मकसद मिल गया, वो तो कहेगा इसी के लिए तो तड़पता था, न्यूज मिल गई, खुशखबरी मिल गई, रब राजी है तुझसे, अब क्या गम बाकी, अब उसको कोई आ फिक्र रह जाएगी। आप सोचें कि वो तो उसके लिए तो जिंदगी का खुश तरीन दिन होगा, वो उसकी खुशी की इंतहा आप सोच सकते हैं कितनी खुशी होगी उसको उस वक्त, कि जब उसको ये खुशखबरी, अभी वो मरा नहीं है, अभी उसको ये खुशखबरी मिल गई, यानी उसकी मौत के टाइम शुरू हो गया, उसका उसका रूह निकालने लगे हैं, मौत का वक्त है, अभी वो बता नहीं सकता घर वालों को कुछ भी, लेकिन कैसा वो मुस्कुरा देगा। आप देखते हैं बाज दफा ऐसे होता है, ये नहीं कि कोई अगर नहीं हुआ तो किसी का बुरा है, ये नहीं है मैं कह रही, लेकिन बाज लोगों को देखा कि वो फौत होते ना तो उनकी शक्ल पे एक मुस्कुराहट होती है, हम उन्होंने क्या देखा कि वो मुस्कुरा रहे हैं, क्या चीज उनको नजर आ गई, क्या उनको कौन सी ऐसी खुशखबरी मिल गई, तो हम अज्यूम करते हैं कि यही होंगी जिससे वो इतने खुश हो गए, जो रब्बुन अल्लाह कहता है फिर उस पे बस जम जाता है, तो अल्लाह ताला उसकी क्या कदरदानी करते हैं, क्या कदरदानी करते हैं कि वो वक्त जब उसका सबसे मुश्किल वक्त है, देखिए इस पूरी जिंदगी के सारे गम जमा कर लो, सब तकलीफें जमा कर दो, मौत की तकलीफ से ज्यादा बढ़ के नहीं है, मौत की तकलीफ उन सबसे ज्यादा है, लेकिन मौत की तकलीफ अपनी जगह है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाती ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ देख के फिर मुझे ये पहले, यानी वो समझती थी कि नेक लोगों को कोई तकलीफ नहीं होती, लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ देखी बिस्तर मर्ग पे तो कहती ये मेरा गुमान खत्म हो गया, ये जो यानी एक गलत फहमी थी ये दूर हो गई, मौत की अपनी तकलीफ है और मौत की तकलीफ बरहक है, लेकिन जिस वक्त एक खुशी मिल गई ना इस बात की तो अब परवाह नहीं रही, अब बस ये है कि अच्छा ठीक है जो भी अब होता है बस इससे गुजर जाऊं मैं, जैसे कि किसी का बच्चा पैदा हो रहा है उस औरत को कितनी तकलीफ होती है, लेकिन बच्चे को देखते ही कैसे उसकी खुशी हो जाती, कोई तकलीफ उसको याद ही नहीं रहती कि मैं तो अभी इतनी चीखें मार रही थी, तो वो देखिए उनके ऊपर फरिश्ते उतरते हैं, वो फिर क्या कहते हैं फरिश्ते उनको, अल्लाह तखाफू वला तहज़न, तू हमारे लिए भी ऐसे ही अंजाम कर कि ना डरो गम ना करो, इसलिए कि इंसान खौफ खाता है ना, डरता है कि आगे क्या होगा मेरा, कहते डरा ना, अल्लाह ने तेरा अच्छा अंजाम रखा है, और गम किस बात का होता है कि पीछे मेरे घर वालों का क्या बनेगा, मेरे बच्चों का, मेरी बीवी का, मसलन मेरे और चीजों का क्या बनेगा, तो वो फरिश्ते कहते गम ना कर, अल्लाह है ना वो सब चीजों की केयर करेगा, जैसे सफर में इंसान जाने लगता है तो दुआ है ना, वल खलीफा तो फिल माली वल अहल, कि अल्लाह खलीफा है तेरे माल, अल्लाह खलीफा हो तुम्हारे माल और अहल का, तो इंसान इस मौत के सफर पे भी जब जाने लगा है तो उस वक्त भी अल्लाह ही खलीफा है उसके माल और अहल का, इंसान सोचता है इनको पीछे छोड़ के जा रहा हूं, पता नहीं इनका क्या बनेगा, तो उसको वो भी तसल्ली दिला दी, इसी तरह इंसान को गम होता है, हाय मैंने क्या कर दिया, मैंने तौबा नहीं की थी, आखिरी वक्त में तौबा कर लेता, कोई सदका कर लेता, या और कोई वक्त ऐसे और वक्त में जहां पे मेरे पास कुछ मौका था मैं और नेकी कर लेता, अभी भी कुछ कम ही रह गई, मैं उस तरह से नहीं कर सका जैसे होनी चाहिए थी, क्योंकि इंसान कितना भी कर ले कम है, कम है, कम है आखिरत के लिए, कितना भी कर ले फिर भी उसको ये हसरत होगी कि काश मैं और कर लेता, क्योंकि बहुत सारे मौके हम जाया करते हैं। ये आप मानेंगे कि हम चाहे जितना भी कोशिश करें हमारे बहुत सारे औकात हैं जो जाया जाते हैं, जिनमें हम कर सकते हैं लेकिन नहीं कर पाते। तो वो कहेंगे ना डरो ना गम करो, कितनी प्यारी खुशखबरी है। और डर है अब कब्र का क्या बनेगा, मेरे हशर का क्या बनेगा, क्योंकि हमेशा याद रखें जो खौफ होता है वो फ्यूचर का होता है। आपको डर लगता है ना अब क्या होगा, अब क्या होगा, वो क्या होता है, वो गम नहीं होता, वो डर है कि क्या होगा क्या बनेगा। और पीछे का होता है गम कि ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों, वो खौफ नहीं है जो पीछे रह गया, पास्ट जो है ना वो खौफ नहीं होता, वो गम होता है। तो वो आके उनको इस मौके पे जो सबसे मुश्किल मौका है उस वक्त आके उसको इतनी बड़ी खुशखबरी सुना रहे हैं, बस कोई गम की जरूरत नहीं, कोई खौफ की जरूरत नहीं। अला इन्ना औलियाल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह ताला ने फरमाया सुन लो ये ऐलान अल्लाह का कि अल्लाह के दोस्तों को ना कोई खौफ और ना कोई गम होता, अल्लाह हमें उनमें शामिल फरमा दे। अपने रोजे के साथ ये दुआ करें, इस वक्त की हो सकता है दुआएं कबूल हो जाए हमारी कि अल्लाह इनमें हमें शामिल कर देना, हमारे अमल तो इस काबिल नहीं है, लेकिन अल्लाह तू हमें इस्तकामत अता फरमा, हमें किसी का डर ना हो, किसी मलामत करने वाले का, किसी रुकावट, कोई चीज हमारे पैर की रुकावट ना बने। अल्लाह इस रास्ते पर जमा देना और मरते दम तक जमाए रखना, ताकि हमारे पास भी फरिश्ते उतरे। और ये अल्लाह ताला ने भेजे ना पे दर पे आ रहे हैं फरिश्ते, पे दर पे आ रहे हैं, यानी कोई एक दो नहीं है, मौत का फरिश्ते तो होते ही है, उसके अलावा पे दर पे फरिश्ते उतर रहे हैं, वो अपनी खुशखबरियां सुना रहे हैं। तुम फिक्र ना करो, फिक्र ना करो, सब अच्छा है तुम्हारे लिए आगे, तुम नहीं गम करो, सब पीछे भी सब ठीक रहेगा। وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ। سبحان اللہ کہ ابھی اس کو موت آ رہی ہے، اس وقت ہی اس کو یہ بشارت دے دیں گے کہ تمہارے لیے جنت ہے جس کا تم وعدہ دیے گئے۔ کب وعدہ دیے گئے تھے، کس وقت؟ جب دنیا میں تھے نا، تو قرآن پڑھتے ہیں، اس میں کتنے سارے وعدے ہیں، جو ایمان لائے، جو صالح عمل کرے، جو اللہ کو اپنا رب کہے، جو اس پہ استقامت رکھے، اس کے لیے وعدہ ہے نا۔ میرے خیال سب کو، جتنے لوگ قرآن پڑھنے والے ہیں، حفظ نہیں کیا ہوا پھر بھی ان سب کو یاد ہے جنات تجری من تحت الانہار، یہ سب کو یاد ہے نا، کیونکہ قرآن میں بار بار وعدے ہیں جنت کے، بار بار جنت کا ذکر آتا ہے، ہر سپارے میں آپ دیکھ لیں جنت کا ذکر ہے۔ تو وہ کہتے ہیں یہ جس کا وعدہ دیے جاتے تھے، اب اس کا مطلب ہے کہ وہ قرآن پڑھتا ہی ہوگا بار بار، تو اس کو یہ کہا جا رہا ہے اللتی کن تم۔ اچھا یہ بات ایک نوٹ کرنے کی ہے، کن تم، کن تم جو ہے نا اس کے اندر یعنی استمرار ہے، اس کو استمراری کہتے ہیں، ماضی استمراری یعنی کنٹینیوٹی، مسلسل کنٹینیوسلی تمہیں دیے جاتے تھے وعدے، تو کنٹینیوسلی وعدے اسی کو ملتے ہوں گے جو قرآن کبھی پڑھتا ہوگا کنٹینیوسلی، اور جس نے سال میں ایک دفعہ کھولنا، کبھی کبھار کھولنا، وہ تو کبھی کبھار ہی یہ بات پڑھے گا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کا قرآن کے ساتھ تعلق کیا تھا، قرآن کی کیا اہمیت تھی اس کی زندگی میں، بار بار پڑھتا تھا، بار بار سنتا تھا۔ ہاں اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ میرے لیے بھی ہے، گارنٹیڈ کچھ نہیں، لیکن وہ دیکھا تھا تم پڑھتے ہوتے تھے نا، وہ جو وعدے پڑھتے تھے نا قرآن میں، وہ جو رسول کی زبانی تم نے سنے تھے نا، اب تم ان وعدوں کے یعنی پورا ہونے کا وقت دیکھ رہے ہو کہ تمہیں اس کی بشارت ہو، جنت کی بشارت ہو۔ دیکھیں یہ کتنی اچھا ٹائم ہوگا پھر ایسے بندے کے لیے جس کو اس وقت ہی موت کے وقت ہی جنت کی بشارت مل جائے، اور پھر دوسرا ٹائم جب قبر میں ہوگا، تب بھی تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے اتریں گے، فرشتے اتریں گے قبر میں بھی، کیونکہ انسان کو خوف ہوگا نا، یہ نئی جگہ، نئی، میں کیا، میرا کیا بنے گا یہاں پہ، کیا میرے سے سوال جواب ہونے ہیں، کیونکہ اس کا انیشیل حساب تو شروع ہو جائے گا۔ وہاں پہ بھی آگے کہیں گے تم نہ ڈر، نہ ڈر، کوئی ڈرنے کی بات ہی کیا ہے، تم نہیں ان لوگوں میں جن کو کوئی عذاب ہونا ہے، تم نہ خوف کھاؤ، تمہیں تو تمہارے لیے تو جنت ہے۔ اور پھر حشر کے دن جب اٹھے گا، سوچیں کہ کیا افراتفری ہوگی، کوئی کسی کو نہ پوچھے گا، با बाप बेटे को ना पूछेगा, उस दिन में जब कोई रिश्ता पूछने वाला ना होगा, उस दिन अल्लाह ताला इन फरिश्तों की ड्यूटियां लगा देते हैं कि ये उतरे और ये आके खुशखबरियां दे और तसल्लियां दे, तसल्ली दे कि भाई कोई फिक्र की बात नहीं है, हम तुम्हें जन्नत तक पहुंचा के आएंगे, जन्नत के गेट तक छोड़ के आएंगे तुम्हें, तुम ना फिक्र करो। क्योंकि आप देखेंगे कब्र से उठने से लेकर जन्नत तक पहुंचने तक बहुत सख्त मराहिल है, बहुत सख्त मराहिल है, और एक एक से गुजरना, कहीं आमाल नामे पकड़ाए जाएंगे, कहीं तराजू में आमाल तोले जाएंगे, कहीं पुल सिरात होगा, कहीं अल्लाह के आगे खड़े होके हिसाब किताब देना होगा। इस तमाम मराहिल के अंदर इंसान तो मुतसलसल होगा ना कि अब मेरा बनेगा क्या। ऐसे में अल्लाह ताला की रहमत कितनी ज्यादा है, कुर्बान जाए ऐसे रब पे, कुर्बान जाए ऐसे रब पे कि जिसने फरिश्तों की ड्यूटियां लगा दी कि तुम जाओ मेरे बंदों को तसल्लियां दो, ये मेरा कलमा पढ़ते रहे जिंदगी के अंदर, इन्होंने किसी की नहीं परवाह की, इनके ऊपर कुछ भी हालात आए, कुछ भी गुजर गया इनके ऊपर, ये इस कलमे से नहीं हटे, इनकी सारी जिंदगी ढल गई इस कलमे में, लोग इनको देखते थे तो पहचान लेते थे कि ये वो लोग हैं जिन्होंने कहा हुआ कि हमारा रब अल्लाह, अब मेरे फरिश्तों तो जाओ तुम मेरे इन औलिया का साथ दो, तुम इनके साथ साथ रहना, वो साथ साथ रहेंगे। इसीलिए तो कुछ ऐसे लोग भी होंगे कि ऐसे वक्त में जब हर तरफ अफरा तफरी होगी तो वो पुरसकून रहेंगे, कुछ ऐसे भी लोग होंगे। तो वो बार बार इन पे नाज़िल, यानी जितने वक्त ऐसे आ रहे हैं ना, जितने जितने मरहले आ रहे हैं, वो उस वक्त उनको आके दलासे दे रहे हैं, जिस वक्त वो तन्हाई महसूस कर रहे हैं, गम महसूस कर रहे हैं, खौफ महसूस कर रहे हैं, जो मुश्किल तरीन मरहले हैं सारे, उन सब में उनका साथ देंगे। अल्लाहु अकबर। नहनु औलियाउकुम फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरा। अब ये देखें उस वक्त ही वो, ये उनकी बात अभी खत्म नहीं हुई, उस वक्त ही वो कह रहे हैं हम तुम्हारे दोस्त पता है दुनिया की जिंदगी में भी थे, अब दुनिया में तो हम नहीं देख रहे उनको, वो कैसे हमारे दोस्त हैं, यहाँ पे तो किसी के ऊपर नहीं फरिश्ते नाजिल हो रहे, जानते हैं कैसे है ये जो हमारे, कभी होता है ना कि हम एकदम बड़ा दिल परेशान हो जाता है, फिर ऐसे ही दिल में तसल्ली आती है कि नहीं मेरा अल्लाह मुझे छोड़ेगा थोड़ी, मेरा अल्लाह मुझे छोड़ेगा नहीं, वो मुझे अकेला भी छोड़ेगा, उसने पहले भी नहीं छोड़ा। तो ये जो तसल्ली आई ये कैसे आई, ये अल्लाह के फरिश्ते हैं जो तसल्लियां देते हैं, जैसे उनके कुराना शैतान है ना, इसी तरह मोमिनों के जो कहे रब्बुन अल्लाह फिर इस पे इस्तकामत करे, उसके ऊपर हालात कैसे कैसे भी आते हैं, उस वक्त जाहिर है कोई तसल्ली की जरूरत है, उस वक्त ये तसल्लियां देते हैं, ये दिलों में डालते हैं, ये बातें दिलों में डालते हैं। तो वो जो आप कहते हैं ना फिर मैंने ये सोचा फिर उसके बाद मेरा दिल इतना पुरसकून हो गया, वो कैसे पुरसकून हो गया, वो फरिश्ते अल्लाह के हैं जो औलिया होते हैं, वो इस तरह से आके इंसान को यानी एक जैसे उसका दिल थाम लेते हैं, उसके दिल को थाम लेते हैं, उसके दिल को एक तशफी हो जाती है, और फिर देखिए नेकियों में हौसला देते हैं, शैतानों से और ये जो उनके हमले हैं उनके वसवास हैं उनका भी मुकाबला करते हैं। आप कई दफ़ा कहते हैं ना मेरे जहन में ये ख्याल आया मैं ऐसे करूं, फिर मैंने कहा नहीं नहीं मैं ऐसे नहीं करती, फिर अल्लाह ताला ऐसे नाराज़ हो जाएगा, वो कैसे हुआ, वसवसा डाला लेकिन उन्होंने फौरन ही उसको डिफ्यूज़ करने के लिए एक बात डाल दी। तो ये दुनिया में भी औलियाँ हैं, और फिर देखें आपको पहले मैंने बताया था अर्श के उठाने वाले फरिश्ते भी दुआएँ करते हैं मोमिनों के लिए, तो फरिश्तों की दुआएँ भी हैं, इनकी निगरानी भी होती है, इनकी अल्लाह के इज़्ज़त से ये हिफाजत भी करते इंसान के अल्लाह के इज़्ज़त से। तो ये फिर इस तरह से इंसान को तसल्ली भी देते हैं और उसको हौसला भी बढ़ाते हैं और उसको चलने में मदद देते हैं, सपोर्ट करते हैं, समझ लें आपका सपोर्ट ग्रुप है जो एलाइज बन के रहता है। तो ये साथ साथ इंसान के दुनिया की जिंदगी में रहते हैं और आखिरत में भी, आखिरत में भी तो मैंने आपको बताया कि आखिरत में किस तरह से वो इंसान को साथ देंगे, और उस दिन तो नजर भी आ रहे होंगे, दुनिया में तो नजर नहीं आते, तो कोई भी जो अल्लाह के रास्ते पर चलने वाला वो अपने आप को अकेला ना समझे, वो ये जान ले कि उसके दोस्त फरिश्ते हैं अल्लाह के। अल्लाह अकबर। अगर दोस्त आप इंसानों को बनाते हैं तो इंसानों की दोस्ती का तो ये हाल है कि इंसान दोस्त भी होना तो कभी हसद करने लगते हैं, कभी उसी को नुकसान पहुंचाने लगते हैं, कभी उसी के लिए कोई गड़ा खोद देते हैं, कभी कोई उसकी बुराई करे तो उसकी एब्सेंस के अंदर वो उसके साथ शामिल हो जाते हैं बुराई करने में अपने ही दोस्त की। लेकिन ये औलिया ऐसे नहीं है। वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदाउन, और हम तुम्हारे लिए इसमें और तुम्हारे लिए इसमें जो वो चाहेंगे तुम्हारे नफ्स और जो तुम तलब करोगे, जो तुम मांगोगे, यानी किस में? जन्नत के की हम तुम्हें बशारत सुनाते हैं। उस जन्नत में क्या होगा? जो भी वो चाहेंगे, जो भी उनकी चाहत होगी। इसलिए कि दुनिया के अंदर तो अपनी इश्तहा को संभाल संभाल के रखा, कंट्रोल करके रखा, नहीं ये नहीं करना वो नहीं। इश्तहा जो होती है ना, तश्तही जिससे ये लफ्ज़ है, जो नेचुरल इंसान की डिज़ायर्स होती हैं। लेकिन नेचुरल डिज़ायर्स में भी इंसान अपने आप को कंट्रोल करता है, अपने खाने पीने में भी, अपने और माल कमाने में भी, अपने और ताल्लुकात में भी अपने आप को कंट्रोल करके रखता है। वहाँ पर कोई कंट्रोल की ज़रूरत नहीं। तुम्हारे लिए जो कुछ तुम चाहोगे और जो इंसान के जहन में कोई भी ख्वाहिश आ सकती है और जो कुछ तुम चाहोगे वो तुम्हें हासिल होगा, जो तुम्हारे नफ्स कहेंगे और जो तुम तलब करोगे। इसका मतलब है तलब करने का क्या है? तलब करने का क्या है कि इंसान वहां पे जाके जब कोई चीजें देखेगा ना तो वहां पे उसको वो आइडियाज आएंगे जो इस दुनिया में रहकर हमारी इस महदूद सोच में आ ही नहीं सकते। वहां पे जब वो चीजें देखेगा तो तब वो मांगेगा कि अच्छा मुझे ये भी चाहिए, अच्छा ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, हाँ हाँ मुझे ये भी चाहिए। तो उस वक्त ये नहीं कहा जाएगा कि ओ नहीं 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 वो तो तुमने दुनिया में ऑर्डर प्लेस करना था ना, अब तो टू लेट हो गया, अब यहाँ पे नहीं तुम कुछ मांगोगे तो अब नहीं हो सकता। नहीं, जो भी तुम मांगोगे वो वहां पे मिलेगा, जो भी नई नई चीजें जहन के अंदर आएंगी वो भी मिलती जाएंगी, और कंटिन्यूसली इंसान तलब करता ही रहेगा और कंटिन्यूसली उसको मिलता ही जाएगा। और उस तलब करने में ना कुछ पे करना है अब, ना कोई डिले है, सोचेगा और वो हो जाएगा। यानी उसका सिर्फ सोच और वो जैसे कुन फयकून है। जन्नत में बाजार भी होंगे जहां पर कोई कीमत नहीं देनी पड़ेगी, मुफ्त चीजें मिलेंगी। तो इंसान के लिए ये क्या है? नुजुलन, नुजुल है मिन गफूर रहीम, गफूर रहीम की तरफ से। अच्छा, इसके अंदर दो बातें हैं। एक तो नुजुल की बात, मैंने आपको पहले बताया था कि नुजुल जो है वो इनिशियल मेहमानी को कहते हैं, यानी जैसे आपको एपेटाइजर कह दें, आप एपेटाइजर की तरह बिल्कुल जब आप जाएं कहीं जो पहली आपको मेहमानी दी जाती है उसको नुजुल कहा जाता है। अल्लाह ताला ने फरमाया, बहुत डेप्थ है इस बात में, अल्लाह ताला ने फरमाया ये जो है ना वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदाउन, ये तो सिर्फ नुजूल है, सिर्फ नुजूल है। अच्छा आप मुझे बताएं, आपके घर में मेहमान आते हैं, आप एक नुजूल उनको देते हैं, ठीक है? नुजूल में आप क्या होता है, गर्मियां तो कोई ठंडा शरबत वगैरह, अच्छा सर्दियां तो कोई सूप वगैरह देते हैं, लेकिन अभी मेन कोर्स बाकी है, अभी तो ये तो सिर्फ आते ही उनको कोई ठंडा गर्म दिया, उसके बाद तो फिर अभी खाना तो पड़ा हुआ है जिसमें आपने 10 तरह की डिशेस बनाई हुई है, बहुत कुछ आपने है, बहुत कुछ अरेंजमेंट किया हुआ है। ये जो शुरू की मेहमानी होती है ये ज्यादा होती है उससे, ये कम होती है, कम होती है ना, ये तो अभी बस जो ही वो उतरा है, नुजुल नजूल से ही है ना, ये अभी वो नाजिल ही हुआ है, तो जो आपने उसको पहली दी चीज वो हमेशा कम होती है। कुछ आपने उसको कोई ड्राई फ्रूट दे दिया, कोई और ऐसी चीज दे दी, कोई चाट या कोई ऐसी, कई जगहों पे होती है एपेटाइजर चीजें। अब एपेटाइजर हमेशा छोटा होता है, नुजुल हमेशा छोटा होता है, उसके बाद होता है जो बड़ा, तो वो बाद में वेट कर रहा है, उसके बाद यहां से फिर वहां जाना है। सोचें कि ये जो अल्लाह ताला ने फरमाया है, फरमाया ये तो सिर्फ नुजुल है, अभी मेन तो अभी बाकी है, ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन है, अभी तो स्टार्ट है, स्टार्टर है, ये स्टार्टर है, क्योंकि इसके बाद जो है ना वो तो वो है जिसको ना किसी आंख ने देखा, ना किसी कान ने सुना, ना इमेजिनेशन में ही नहीं आ सकता, तो उसको बताएं कैसे। सुभान अल्लाह। और दूसरी बात, ये किसकी तरफ से है? मिन गफूर रहीम की तरफ से। ये नहीं कहा कि अजीज इन हकीम, ये नहीं कहा कि अलीम, ये नहीं कहा कोई और अल्लाह ताला की सिफात यहाँ पे आ जाती। गफूर रहीम ही क्यों आया? इसलिए कि इससे पता चलता है कि इन लोगों की कोई गलतियां भी होंगी जो अल्लाह ने माफ कर दी। इसमें इशारा मिल रहा है कि ये मेहमानियां उसकी तरफ से जिसने माफ कर दिया है, जो बहुत माफ करने वाला है और बहुत रहम करने वाला है। उसने माफ भी कर दी और अपनी रहमत से ऐसी जन्नत भी दे दी। सुभान अल्लाह। अब ये कि जो लोग इस तरह से इस्तकामत से चलते हैं, उसके बाद क्या होता है कि जाहिर है एक इंसान जब इस दीन के रास्ते पर जम जाता है ना, तो उसके बाद उसको दूसरों की फिक्र लग जाती है कि अल्लाह अब मैं उसका भी सोच रही हूँ कि उसका क्या बनेगा, उसका क्या बनेगा। इंसानियत इतनी आग की तरफ जा रही है, अल्लाह इनका क्या होगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया ऐसे ही इंसान के लिए, वमन अहसनु कौलम मिम्मन दआ इलल्लाह। ये ना समझ नहीं, ये जो अब आगे आयात आ रही है ना, ये हाइट है कैरेक्टर की इंसान के, आप यानी टॉप पे। इसको ऐसे समझें कि मसला है कि एक क्लास में इतने स्टूडेंट्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स का ये सिर्फ ख्याल होता है कि हम बस पास हो जाए ना, इतना ही काफ़ी है। और कुछ का होता है कि नहीं, पास नहीं सिर्फ, मुझे डिस्टिंक्शन लेनी है, मुझे आईवी लीग में जाना है, मुझे बड़ी यूनिवर्सिटी में। मैं बस ये छोटा मोटा पास होना नहीं है, पास होने वाला भी चला जाएगा किसी ना किसी कॉलेज में, लेकिन मुझे तो वो टॉप पे जाना है। ये वो टॉपर्स की बात हो रही है, समझा गई। अपनी दुनिया के मामले में हम अपने बच्चों को कभी नहीं कहेंगे बेटा इतनी मेहनत ना कर, पास ही हो गया तो काफी नहीं है। हम कहते हैं नहीं बेटा, बड़े एम रखो, बड़ी उसके ऊपर जाओ। आखिरत के मामले में भी हमें इसी किस्म के एम्स रखने चाहिए कि ऊपर के हमने दर्जे लेने हैं, हमने और आगे से आगे जाना है। उसमें ये नहीं देखना मैं मुसलमान हूँ इतना काफ़ी नहीं है, मैं कलमा पढ़ती हूँ इतना काफ़ी नहीं है, लोग तो कलमा भी नहीं पढ़ते, लो मैं नमाज पढ़ती हूँ ये नहीं काफ़ी हो गया, आजकल कौन नमाज पढ़ता है। नहीं, दीन के मामले में आगे की तरफ देखो, अपनी आखिरत बनाने में ऊंचे से ऊंचे दर्जे की कोशिश करो। अल्लाह ताला ने यहाँ पे ऐसे ही लोगों की क्वालिटीज बताई हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया उससे प्यारी बात, उससे अच्छी बात उस किसकी हो सकती है, यानी किसी की हो ही नहीं सकती। किसी की बात इसकी बात से ज्यादा बेहतर नहीं हो सकती। किसकी बात से? मिम्मन दआ इलल्लाह, जो अल्लाह की तरफ बुलाए। वो कहता भी है रब्बुनल्लाह, वो इस पे इस्तकामत भी रखता है, फिर वो लोगों को भी अल्लाह की तरफ बुलाता है। जाहिर है देखें, जब किसी चीज़ की मोहब्बत दिल में बैठ जाए ना, तो बातें भी उसी की होती हैं। जिनके दिल में दुनिया की मोहब्बत है, उनके मुंह से हर बात सुना वही है। जो आप देख लें जो बिजनेस में बहुत ही ज़्यादा अपने आप को खपाया होता है, उन्होंने बस उनसे जब बात करें लग वो बिजनेस की बात करते हैं। जो बहुत ज़्यादा बच्चों के अंदर खपे पड़े होते हैं, उनसे हर वक्त बच्चों की बात सुने। जिसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत बहुत ज़्यादा होती है ना, वो अल्लाह की बातें करता है, वो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता है, उसको लोगों की भी फिक्र पड़ जाती। अल्लाह ताला ने फरमाया उससे अच्छी तो बात ही किसी और की नहीं हो सकती जो अल्लाह की तरफ बुलाता है। क्योंकि लोग बड़ी बड़ी चीज़ों की तरफ बुलाते हैं। आप ये एड्स देखते हैं, एड्स में हर चीज़ के ऐड आजकल मिलते हैं, आप उसमें किसी ना किसी प्रोडक्ट की तरफ बुलाया जा रहा है। कोई कह रहा है ये हमारे से टिकटें खरीद लो इधर आ जाओ, कोई कह रहा है ये टूथपेस्ट खरीद लो, कोई कुछ और कह रहा है, हर एक बुला रहा है। बुलाने वाले बहुत हैं, तरह तरह की बोलियां इस दुनिया में, लेकिन अल्लाह ने फरमाया कि सबसे प्यारी बात, सबसे प्यारा इनविटेशन वो है जो अल्लाह की तरफ बुलाता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह के नज़दीक वो सबसे प्यारी बात है। हमें चाहे और बातें बहुत अच्छी लगती हों, अल्लाह के नज़दीक वो कॉल सबसे खूबसूरत है। यानी जो दाई अल्लाह है, सूरह आज़ाब में हमने पढ़ा था ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरफ बुलाने वाले हैं। सबसे पहले तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरफ बुलाने वाले, और उनके बाद जो भी ये काम करेगा वो भी इसमें शामिल है, उसकी भी बात सबसे अच्छी हो जाएगी। यहाँ पे एक बात नोट कीजिए कि यहाँ पे ये नहीं कहा गया कि जो बुलाए किसी फिरके की तरफ, किसी मसलक की तरफ, किसी किसी शख्सियत की तरफ, कि फला उस्ताद, फला इंस्टीट्यूट, फला फिरका, फला ये, इसकी तरफ बुलाए, वो नहीं कहा गया। इलाल्लाह, अल्लाह की तरफ बुलाने वाला बस, वरना मसलकों की तरफ बुलाने वाले, बस हमारे फिरके में कोई आ जाए तो बस, बस हमारे इंस्टीट्यूट से जुड़ोगे तो तभी तुम्हें हिदायत मिलेगी, वरना तो नहीं मिलेगी। और फिर इसी तरह और भी कई है, कोई अपनी बरादरियों की तरफ बुलाते हैं लोगों को, उस पर उनके नामों पे जमा करते हैं, कोई और अपनी जुबान की तरफ, कोई और अपनी कोई चीज़ों की तरफ लोग बुलाते हैं, कोई फैशन की तरफ बुलाता है, कोई किसी चीज़ की तरफ, लेकिन जो अल्लाह की तरफ बुलाए, ये खुशनसीब लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने फरमा दिया, ये बेस्ट बात है इनकी, जिसको रब फरमा दे कि ये इसकी बातें सबसे प्यारी हैं, उसके क्या ही कहने। वह आमिल सोलेहन, और फिर सिर्फ बुलाए नहीं, कि बुला तो रब की तरफ रहा है और उसके बाद खुद कुछ भी नहीं करता। अतामुरुना नासा बिलबिरी वतनसौना अनफुसकुम, तुम लोगों को नेकी तरफ बुलाते, अपने आप को भूल जाते, ऐसा ना हो वो खुद भी नेक काम करे, अल्लाह की तरफ बुलाए भी और खुद भी उसका सबूत दे दे कि मैं भी देखो अल्लाह के कहने के मुताबिक चलता हूँ, अल्लाह की फरमाबरदारी करता हूँ, मैं भी गुनाहों से बचने वाला हूँ। तो ये बात सोच के हम तो भाई बड़े दीन का काम कर रहे हैं, हम तो बड़े बड़ा दर्स दे रहे हैं, हम तो बड़ा इस तरह कर रहे हैं, और इसके ऊपर इक्तफा करके बैठ जाना, ये काफी नहीं है। अमल खुद के भी सही होने चाहिए। और याद रखे, यहाँ पे जो इन्वाइट करना है ना अल्लाह की तरफ, ये जरूरी नहीं है कि कोई दर्स ही दे रहा हो तो फिर वो इन्वाइट कर सकता है, कोई अपने कलम से कुछ लिख के इन्वाइट कर सकता है, कोई अपनी स्पीच से इन्वाइट कर सकता है, कोई मीडिया पे बैठा हुआ है वहां पे बैठ के कोई बात कर रहा है और उससे इन्वाइट कर रहा है, तो बहुत सारे फोरम हो सकते हैं इन्विटेशन के। ये जो अल्लाह की तरफ इन्वाइट करते हैं ना, तरह तरह से आप तरीके सोच सकते हैं कैसे हम लोगों को इन्वाइट करें। وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ, और वो ये कहता है कि मैं मुसलमानों में से हूँ, यानी जुबान से भी इकरार करता है, जुर्रत के साथ इजहार भी करता है कि हालात कुछ भी हैं, बस मैं तो मुसलमान, वो इससे नहीं हटता, वो इसके ऊपर प्राउड टू बी अ मुस्लिम है, वो डर नहीं रहा कि हाँ मैं मुसलमान हूँ, अब ये मैंने कह दिया तो ये लोग तो पता नहीं बुरा ही ना मान जाए। अब ये दावा जो है ना, ये यहाँ पे जिस दावा की बात हो रही है, ये मुस्लिमों में भी और गैर मुस्लिमों में, दोनों में इसी तरह करना है, दोनों में खुद का भी अमल वैसा होना चाहिए, अल्लाह की तरफ सिर्फ दावत होनी चाहिए, और जब और उनमें भी खुद को कहना कि मैं मुसलमान हूं। कई लोग अपनी किसी स्किल के तहत, कोई भी उनके पास कोई खास टैलेंट ऐसा होता है, उसके थ्रू भी अल्लाह की तरफ दावत दे सकते हैं। और कई लोग कहते हैं हमें बोलना नहीं आता, जैसा तैसा भी बोलना आता है, दावत दे दो, अल्लाह ने तुम्हारी बात को सबसे खूबसूरत बात कह दिया, सबसे अच्छी बात कह दी है, अल्लाह ने अल्फाज नहीं देखने कि इसके टूटे फूटे अल्फाज थे, इसके अंदर बहुत फसाहत बलागत नहीं थी, इस ये तो इतनी कोई अच्छी वो नहीं, बस तुम लोगों को बुलाओ, आप हैं अल्लाह की तरफ बुलाने वाले, दाइया इलल्लाह है आप। पांच दफा हमारे पास अपॉर्चुनिटी होती है लेकिन हम परवाह नहीं करते। एक जगह का मुझे एक उसका पता है, किसी एक बिजनेस है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है कि वो अपने उनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो उनका बिजनेस चलता ही ऐसे है कि वो दुकानों वगैरह पे अपने प्रोडक्ट्स नहीं देते, उनके इस तरह से यानी एक समझ लें मेंबर्स होते हैं, मेंबर एक बन गया वो उन प्रोडक्ट्स को खरीदेगा, अब आगे वो अपने मसलन और चार मेंबर उसने अगर बनाए हैं तो उन चार के भी पैसे उसको मिलेंगे, फिर वो चार आगे आठ बनाते हैं तो उन आठ के पैसे इन चारों को भी मिलेंगे और इसको भी मिलेंगे जो पहला था, इसी तरह चेन आगे चलती जाती है और कमीशन में उनका भी कुछ ना कुछ, जो पहला बंदा था उसका कोई ना कोई हिस्सा पड़ता चला जाता है। उसके लिए एक दफा उन्होंने कोई सेमिनार वगैरह किया तो उन्होंने कहा हम किस तरह से लोगों को लाए, क्योंकि अब रिश्तेदारों को ले आए हैं, फ्रेंड्स को भी ले आए, अब और किस तरह से लेकर आए, तो उसके अंदर जो वो स्ट्रेटेजी बता रहे थे, उन्होंने कहा लोगों से दोस्ती करो सिर्फ इसलिए कि ताकि उनको इस तरफ लेकर आओ, क्योंकि वो फिर जब मेंबर बन जाएंगे तो आपको कमीशन मिलने शुरू हो जाएगा, जितने लोगों को आप लेकर आओगे आपको उनका कमीशन मिलेगा। तो उन्होंने कहा भाई आप ट्रेन में जा रहे होते हैं, आप वहां पे लोगों से हेलो हाय करें, अपना कार्ड दें, उसके बाद उनको कॉल करें, फिर उसके बाद उनसे ताल्लुकात बढ़ाएं, किसी को बुला लें घर पे, कोई कहीं पे भी मिल जाता है उसे आगे जाके बात करें। यानी मैं सोच रही थी देखो ये बिजनेस है सिर्फ, इसके लिए वो कितनी इनको तरीके बता रहे हैं कि ऐसे करो ऐसे करो, और पीछे माइंड क्या है, माइंड सेट क्या है कि मैंने किसी तरह इसको घेर घार के मेंबर बनाना है, हमें कुरान के लिए ऐसा क्यों नहीं आता कि हम अल्लाह की तरफ दावत दें और फिर उसके अंदर उसकी खातिर इसको जहन में रखते हुए हम लोगों से ताल्लुकात बढ़ाएं कि हाँ मैंने इसको अल्लाह की तरफ दावत देनी है, इसके लिए मैं ताल्लुक बना रही हूँ, इसके लिए मैं लोगों से आगे बढ़ बढ़ के मिलूं ताकि मैं उसको भी इनवाइट करूं, उसको भी इनवाइट करूं, उसको मैं, और मेरा नाम भी इनमें आ जाए जिनके बारे में अल्लाह ने तारीफ कर दी कि इसकी बात बेस्ट है। बाकी सारी बातें बेकार है, बात वो ही अच्छी है जिसमें अल्लाह की तरफ बुलाया जाए और साबित भी करे कि मैं मुस्लिम हूं। और मुस्लिम कौन होता है? जो खुद फरमा बरदार हो। मुस्लिम का मतलब ही है फरमा बरदार, यानी मैं फरमा बरदार हूं अल्लाह का, अल्लाह की फरमा बरदारी को शो भी करे, कहकर भी शो करे। और फिर जब इंसान ये करेगा तो उसके रास्ते में बड़े मसले आएंगे, क्योंकि जब इंसान अल्लाह की तरफ बुलाता है, अच्छी बात की नसीहत करता है, बुरी बात से रोकता है, आपको पता है साबित सब्त ने यही था ना, उनका कुछ लोग थे जो अल्लाह की तरफ, अल्लाह के अहकामात की तरफ बुलाने वाले थे, कुछ लोग नाफरमानी करने वाले थे, कुछ लोग कहते थे तुम्हें क्या जरूरत है बुलाने की, तुम क्यों बुलाते हो। बच एंड में कौन गए? वो सिर्फ बचे जो मना करते थे। तो दावत इल्लाह में ये भी है कि अल्लाह ने जो काम कहे हैं उनकी तरफ को बुलाना, गुनाहों से लोगों को रोकना, अमर बिल मालूम नहीं अनिल मुनकर भी अल्लाह की तरफ ही दावत देना, क्योंकि उसी से अल्लाह से जुड़ेंगे लोग। फिर अल्लाह की मोहब्बत लोगों के दिलों में जगाना, अल्लाह ताला का खौफ लोगों के दिलों में जगाना है कि अल्लाह से डर जाओ, मत अपनी जो आप आखरत का और वो उसका लोगों को समझाएंगे बताएंगे तो वो भी दावत इल्लाह का काम है। उनके सारे ये दावत इल्लाह के काम है जिससे लोग अल्लाह वाले बन जाएं, अल्लाह के फरमा बरदार बन जाएं, अल्लाह के आगे झुकने वाले बन जाएं। अगर मुस्लिम है तो अल्लाह के फरमा बरदार बन जाए, अगर गैर मुस्लिम है तो तौहीद पे तो आए पहले। ये सब दावत इल्लाह का काम है, समझ आ गए? यानी दीन का सारा काम अल्लाह की तरफ ही तो दावत दे रहा है ना, नेकी को प्रमोट करके आप दावत दे सकते हैं, बुराई को एलिमिनेट करके आप दावत दे सकते हैं। तो जो ये काम करता है ना वो नबियों का वारिस है, वो नबियों वाली काम को पूरा कर रहा है, उनकी सुन्नत पूरी कर रहा है जो अल्लाह की तरफ बुला रहा है लोगों को। तो ये काम आप समझ लें कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये काम किया तो ये बेहतरीन काम है। तो लेकिन इसमें एक बात को याद रखना चाहिए कि तासुब से उठ के कभी भी फिरकों की तरफ ना बुलाइए, कभी भी खास जमातों की तरफ ना बुलाइए, बल्कि ये जब आप कुरान की दावत देते ना ये भी अल्लाह की तरफ दाना, क्योंकि कुरान क्या है? मेरी आपकी बातें थोड़ी है, अल्लाह की, अल्लाह का कलाम है, ये सबसे अवलीन है अल्लाह की तरफ दावत देना। और देखिए मैंने तो ये काम शुरू कर दिया, अब आप में से कौन कौन है जो मेरा ये साथ देगा कि अल्लाह की तरफ दावत दे और अल्लाह ताला हमें इस ग्रुप में शामिल कर जिनकी बात सबसे अच्छी हो और इसमें हमें अल्लाह ताला कबूल फरमा ले। इसके लिए अब हम इंशाल्लाह रमज़ान के बाद एक कोर्स शुरू कर रहे हैं अलमिसबाह के नाम से, और उस कोर्स के अंदर वो तमाम लोग जो आज तक हमसे हमारी बात नहीं सुनते थे कि हमें टेस्ट से डर लगता है, हमें इससे डर लगता है, हमें असाइनमेंट नहीं करनी, हम इतना वक्त नहीं दे सकते, हम उनके लिए चंद एक दो आयतों का सिर्फ लेसन भेजा करेंगे इनके ऊपर जो भी हमारे मोड्स हैं व्हाट्सएप वगैरह, चंद चंद आयतों का, बहुत कम, यानी आप 20 से 40 मिनट तक के दरमियान का ये कुल लेसन वीक में दो दफ़ा आया करेगा। उसके अंदर हम लोगों को शामिल करने की कोशिश करें, उसकी दावत दें लोगों को कि आ जाओ लोगों कुरान की तरफ। मैं तो लोगों को कहती हूँ देखो भाई आप लोगों की मर्जी है, आप लोग जिस तरफ भी जाके कंफर्टेबल हों, आपको लगे कि मैं यहाँ पे मुझे ज़्यादा समझ आ रही है, यहाँ पे मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इनकी बात मुझे ज़्यादा समझ, आप वहाँ जाके सीख लो। हमें यह नहीं कि ज़रूरी मेरे पास ही आओ, लेकिन अब हम किसी की तो दावत देंगे ना, तो हम कहते हैं कि अच्छा चलो इसी कोर्स में शामिल हो जाओ, किसी तरफ तो आओ, सुन ही लो कुरान, छोड़ो टेस्टों को और इनको, सब कुछ को छोड़ो, तुम्हारे पास नहीं है टाइम, हम तुम्हें ज्यादा टाइम भी नहीं लेते, घंटा भी नहीं लेते तुम्हारा, उससे भी कम चंद मिनट्स हैं जो तुम स्पेयर कर लो, वो भी हर रोज नहीं, हफ्ते में दो दफा सिर्फ। तो ये दावत मुझे और आपको देनी है आगे, कुरान की दावत। बाद साथी मशवरा देते हैं कि देखिए हमने इतनी दफा कुरान पढ़ा लिया, अब कोई और बुक्स इस कोर्स के बाद पढ़ाएं, लेकिन कुरान के अलावा किसी चीज में दिल नहीं लगता। अल्लाहुम्मा जाल कुरान रबिया कल्बी व नूरा सदरी व जला हुज़नी व ज़हाब हम्मी व गम्मी। मेरे तो यही दुआ है कि अल्लाह इस कुरान को मेरे दिल की बहार बना दे, सीने का नूर बना दे, अल्लाह मेरे गम और हम को दूर करने वाला बना दे। ये हम सब की दुआ होनी चाहिए। हम बस अल्लाह के कलाम की तरफ लोगों को बुलाएं, क्योंकि देखिए इवन हम कोई किताबों को पढ़ने के लिए बुला लेंगे ना कि आ जाए ये वाली किताब पढ़ लेते हैं, वो वाली, उसमें भी वो बात नहीं है जो कुरान के अंदर है। ये डायरेक्ट है अल्लाह का कलाम, किससे कहानियों की किताबें फिर भी पीछे ही रह जाती हैं। तो इसको हमने इसको बाईपास करके हम कोई चीज को सोचेंगे वो चीज ज्यादा बेहतर होगी, मेरे ख्याल अगर वो लोग वो पढ़ लेना तो वो ज्यादा बेहतर, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इससे बेहतर कोई चीज है ही नहीं। तो ये बंदा भी अपने आप को मुसलमान कह रहा है, ये नहीं कह रहा कि मैं हनफी हूं और मैं शाफी हूं और मैं बरेलवी हूं और मैं ये हूं और मैं कुछ भी नहीं। उसको पता है कि अल्लाह ने उसका नाम मुसलमान रखा, तो वो अपने आप को मुसलमान ही डिक्लेयर करता है। अल्लाह अकबर। तो ये बाज कहते हैं कि ये खास तौर पे अजान देने वालों का मकाम वहां पे यहाँ पे बताया गया, क्योंकि वो अल्लाह की तरफ दावत देते हैं ना, वो पुकारते हैं कि अल्लाह की तरफ आओ, फलाह की तरफ आओ, सलाह की तरफ आओ, तो ये अल्लाह की तरफ दावत देना है, तो ये उनका मकाम बताया गया है। लेकिन मक्की दौर में चूंकि अजान नहीं थी, ये भी उसमें शामिल हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ वो नहीं है लोग जो अजान देने वाले हैं, बल्कि कोई भी जो अल्लाह की तरफ दावत दे। लेकिन अजान देने वालों का भी बहुत बड़ा मकाम है, इसलिए कि हजरत साद बिन अबी वक्कास फरमाते हैं कि अजान और इकामत के दरमियान मुअज्जिन का मकाम ऐसे है जैसे कोई मुजाहिद अपने खून में लथपथ हो, यानी मुजाहिद है, उसने अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया, वो खून में लथपथ हो गया, यानी शहादत के मकाम तक पहुंचने लगा, और वो मकाम है अजान और इकामत के दरमियान जो मुअज्जिन है उसका, यानी जो अजान भी देता है इकामा भी देता है, तो उसका ये मकाम है। तो बार कैफ उनका भी बहुत बड़ा मकाम है, लेकिन अमूमी माना देखा जाए तो हर एक जो दावत देने वाला है। अब जब दावत देंगे तो कोई लोग आपको हार तो नहीं पहनाएंगे, खास तौर पे जब आप बुराई से रोकते हैं तो वो किसी को भी अच्छी नहीं लगती, चाहे आप कितनी ही उसको मीठी रैपिंग के अंदर दे दें, वो नसीहत होती तो कड़वी ही है। तो अब जब नसीहत करेंगे किसी को बुराई से, कहेंगे कि भाई ऐसे ना करो, प्यारी बहन ऐसे नहीं, जितना मर्जी आप प्यार से कह दें, लोग उसको अच्छा नहीं समझते। लोग कहते हैं कि हमें क्यों कहा, हमें क्यों मना किया, हमने तो ये करना है, और उनको अच्छा नहीं लगता कि हमें कोई पॉइंट आउट करें। अब जिस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी देखें तबलीग की थी, तो उस वक्त क्या हुआ था, कितनी ही आपकी अच्छी किरदार अखलाक सब कुछ था, लेकिन लोग दुश्मन बन गए, लोगों ने मुखालफत की। अब क्या किया जाए, अब इस मुखालफत का जवाब कैसे दिया जाए, ये दाई को बताया जा रहा है, खास तौर पे दाई को, बाकी भी लोगों के लिए। और मैंने जैसे आपको कहा ना कि वो जो टॉप करने वाले हैं, टॉपर्स हैं, जो बड़ी यूनिवर्सिटीज में जाने वाले हैं, उनको मेहनत भी उस तरह से करनी पड़ती है ना, ये उनके लिए। जब हम कहते हैं ना हमने स्काफ भी ले लिया, नकाब भी ले लिया, हिजाब भी ले दिए, सब कुछ हमने कर लिया, बस अब तो सारा दिन तो हमारा मुकम्मल हो गया, तो हम आराम से बैठ जाते हैं, फिर हम पूछते हैं अब और हम क्या करें, हमने तो सारा कुछ कर लिया, अब नकाब से भी ऊपर क्या करेंगे, और तो कोई उनको चीज नहीं समझ आती, क्योंकि उन्होंने दीन सिर्फ समझा होता है ये पर्दा, बस उनका। हमारे से अक्सरियत लोग जो ना समझ है ना, उनके नजदीक दीन बस यही है, जिसने कर लिया वो दीनदार, जिसने छोड़ दिया वो बेदीन। ये क्या फिलोसफी है, ये तो एक हुक्म है दीन का। अब क्या है, उनका चूंकि दिमाग इतना छोटा ही हो गया होता है, तो वो समझते हैं कि हम बस दीन की हाइट पे पहुंच गए। ये हाइट नहीं है, हाइट ये है कि इंसान इस आयत पे अमल करने वाला बन जाए। ये हैं जो बड़े लोग हैं। अब हम जिस मकाम पे भी हैं, हमें इसके लिए स्ट्राइव करना है, इसके लिए कोशिश करनी है। वो क्या है, वला तस्तविल हसनतु वला सय्यिअ, बराबर नहीं हो सकती नेकी और ना बुराई। ये अच्छा और बुरा एक नहीं होता। हम कहते हैं कोई नहीं, बुराई भी कर ली तो क्या फर्क पड़ता है, ये बुरा भला बराबर ही है शायद। नहीं, अच्छाई और बुराई का फर्क जानो, अमल के लिहाज से नेकी और बदी में बहुत फर्क है। यहाँ पे अब बताया जा रहा है कि किस तरह से जब दावत इल्लाह देनी है ना, तो बाज दफा सिर्फ बोलने से नहीं होती, वो अमल से होती है, और अमल के अंदर बुरा अमल और अच्छा एक बराबर नहीं हो जाते। इदफा बिल्लती ही आसन, दूर करो उस तरीके के साथ जो ज्यादा अच्छा है। यानी क्या मतलब है, जब बुराई और भलाई बराबर नहीं होते तो जो बुराई करे उसको भलाई के साथ दूर करो, उसको भलाई के साथ यानी रिपेल करो, मिटाओ। बुराई का जवाब अगर बुराई से दोगे तो बुराई मिटेगी नहीं, हाँ बदला हो जाएगा, लेकिन बुराई का जवाब भलाई से दोगे तो बुराई मिट जाएगी। क्या होगा, फइदल्लज़ी बैनक व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलीयुन हमीम। तो क्या होगा, जो तुम्हारे और उसके दरमियान अदावत है ना, जो भी तुम्हारी मुखालफत करता है, तुम्हारे साथ बुराई करता है, वो तुम्हारा दोस्त बन जाएगा और जिगरी दोस्त बन जाएगा। और इसकी कई एक मिसालें आप उठा के दे सकते हैं सीरत से, कई एक। यानी अगर प्रैक्टिकली इसको देखना है ना, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी देख ले, कि वो हिंद जो जिसने हजरत हमजा का कलेजा चबा लिया था, इतनी ज्यादा यानी उसको दुश्मनी और नफरत और उसके अंदर और बदला लेने इंतकाम की आग में, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस कदर दुख हुआ था वो भी हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद जब मक्का फतह हुआ और वो आई और उसने आके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आई, तो आपने माफ कर दिया था उसको। वो जब इस्लाम ले आई थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको माफ फरमा दिया। उसके बाद उसी के अल्फाज थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इससे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा मुझे कोई मबगूज नहीं था, यानी मैं इतना बुग्ज रखती थी, इस कदर नफरत रखती थी, और अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा मुझे कोई महबूब नहीं है। ये उसके अपने अल्फाज हैं, और भी एक साहबी के यही अल्फाज हैं, सेम अल्फाज हैं, ये इससे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए सबसे ज्यादा काबिल नफरत थे, और अब आपसे ज्यादा कोई महबूब ही नहीं है, इतने महबूब है कि मैं आपकी तरफ नजर भर के देख भी नहीं पाता, इतने ज्यादा महबूब हो गए थे। ये किस तरह हुए थे, सिर्फ कुरान पढ़ पढ़ के सुनाने से नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार से। जब आपने माफ कर दिया, आपने उनको भी माफ किया, अबू जहल का जो बेटा है इकरमा, इकरमा उसको माफ करना, ये कितनी बड़ी बात है। हम तो दस सुनाते रहे कि तेरे बाप ने मेरे साथ ऐसा किया था, मैं तुझे क्या समझूं, उसको ताने दे के खत्म कर दे। हम तो दुश्मनियां ऐसे पालते हैं कि नस्लों तक नहीं छोड़ते, और हमारे कोई काबू में तो आ जाए, कोई लड़की बहू बन के आ जाए, फिर उसके घर वालों के साथ कोई पुरानी बात थी, वो इस औरत के ससुराली थे, और सारी जिंदगी कहती रही तेरी माँ ने तो ऐसा किया था, तुझे जो ऐसा किया, नहीं छोड़ते। ये तो छोटी छोटी चीजें हैं, तो फिर नहीं हम छोड़ते। ये अबू जहल क्या करता था, ये किससे छुपा हुआ, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक देखें, कि सहाबा से फरमाया था कि इकरमा आए तो अबू जहल ना का करो, क्योंकि अबू जहल तो उसका नाम नहीं था, तो बाद में नाम पड़ गया था ना, उसका असल नाम तो नहीं था, अबुल हकम था उसका नाम, तो हिकमतों का बाप बना फिरता था, तो ये ना कहा करो, क्यों, इसलिए कि उसको दुख होगा। दुश्मन के बेटे से भी इस तरह की हमदर्दी रखना, और फिर वाहशी जिसने हजरत हमजा को शहीद किया था उसके साथ आपने क्या सलूक किया, वो तो होना तो ये चाहिए था कि उनको कहते कि अब तुम्हारा इस्लाम भी कबूल नहीं है, जाओ, जबकि पता ही इस्लाम ले आएंगे ना तो बख्शे जाएंगे। वैसे लोगों के बारे में तो इंसान का ये होता है कि इनकी कभी बख्शिश ही ना हो, अल्लाह करे कभी इनको माफी ही ना मिले। हम तो छोटे छोटे कसूर करने वालों को ये बद्दुआएं दे देते हैं, ये कहां नबी के साथ ऐसा मामला करने वाले, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ क्या सलूक किया। और हम इसके बरक्स अगर ये देखें कि हमारे क्या हालात हैं, हमारे अखलाक के क्या हालात हैं, ये तो बहुत ऊपर के पाए की बात है। लेकिन जब कोई बुरा करे ना, खास तौर पे दीन के रास्ते में, या वैसे भी कोई बुरा करे, तो एक तो ये मामला ये हो सकता है उसने बुरा किया, अब मैं भी बुरा कर लूं, तो ये अदल है, ठीक है, उतना दांत के बदले दांत, जान के बदले जान, इस अदल का जायज है। नंबर टू है, इसके जवाब में मैं हट के चली जाऊं और खामोशी इख्तियार करूं। नंबर थ्री ये है कि उसकी बुराई के जवाब में भलाई लेकर आ जाऊं, ये है हाइट, ये है ऊपर का दर्जा, इस तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। तो इसको हम, चूंकि हम अब अक्सरियत अपने इर्द गिर्द भी नहीं देख पाते, हम तो ये सोचते हैं कि नहीं, अगर किसी के साथ मैंने ऐसा किया कि मैंने उसको भलाई से जवाब दे दिया, कोई ज्यादा ही ना बिगड़ के बैठ जाए, अपने आप को बहुत ना समझने शुरू हो जाए और मुझे समझेगी कि मैं बड़ी कमजोर हूं या मैं इससे कम हूं क्या। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो यही अखलाक था, हम जो मर्जी समझे। अल्लाह ताला ने यहाँ पे गुर बता दिया दुश्मन को दोस्त बनाने का, अगर दुश्मन भी है ना वो भी तुम्हारा दोस्त बन जाएगा। और ये सारी मिसालें जो मैंने आपको दी हैं, दुश्मन कैसे दोस्त बन गए आपने देख ही लिया। तो अगर हम वाकई चाहते हैं कि हम अपने दुश्मनों को खत्म कर दें, तो उनको जान से मार देना खत्म करना नहीं है, उनके साथ अच्छाई कर दोगे वो खत्म हो जाएंगे, वो इसलिए कि वो तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे, क्योंकि आप उसको सरप्राइज कर देते हैं, है ये क्या हो गया, मैंने तो ये किया था, ये इसने क्या कर दिया। आप उसको इतनी ऐसी मार मार देते हैं कि जिस जैसी, यानी वो अपने अंदर खुद इतना शर्मिंदा हो जाएगा, इतना अपने अंदर गिल्ट महसूस करेगा कि मैंने क्या किया। तो ये है अखलाक की मेराज, ये है यानी टॉप है अखलाक में। तो जो मैंने कहा आपको कि अगर हम अपने अखलाक देखें कि हमारे अखलाक क्या है, दूसरा रूड होता है हम भी रूड हो जाते हैं, दूसरा सख्त बात करता है हम भी सख्त बात करते हैं, वो नरम बात करता है हम नरम कर लेते हैं, ये कोई अखलाक की हाइट नहीं है, ये कोई बहुत बेहतरीन अखलाक अगर हम समझते हैं ना बहुत अच्छे अखलाक वाले हैं, तो ये कोई बहुत अच्छे अखलाक नहीं है, इसलिए कि ये तो जानवर भी करते हैं। आप जानवर को कुछ चारा देंगे कुछ देंगे तो वो भी सर झुका देता है, आप उसको कुछ पत्थर मारेंगे तो वो भी काटने को दौड़ता है, तो ये कोई ऐसी चीज नहीं कि जो हम कहेंगे मैं तो बहुत बड़े अखलाक वाली हूँ। अखलाक का इंसान का तब पता चलता है उसकी हाइट का कि कितने पाए का है, जब वो इस आयत के ऊपर अमल करके दिखाए तो फिर समझ में आता है कि ये भाई वाकई बड़े ऊंचे अखलाक का मालिक है, ये बड़े ऊंचे अखलाक है इसके। और ये कर ला कि किसी ने मुझे एक कहा है तो मैं जब तक दो ना सुनाऊं तब तक नहीं मैंने चैन से बैठना, किसी ने मुझे ये बात कही है मैं घर तक इसको छोड़ के आऊंगी, अब इसकी जरूरत कैसे हुई कि इसने मुझे ये बात कह दी, ऐसी सुनाऊंगी कि आइंदा तो कभी इसकी साथ नस्लें भी तोबा करेंगी मुझे कोई बात कहने से। ये कौन से अखलाक है मुझे बताएं, जब हम ये बातें कह रहे होते हैं तो ये कौन से अखलाक है, कोई हमें अच्छी तरह बात करे हम आगे से टूट के पड़े उसको, ये कौन से अखलाक है, कोई हमसे सवाल कोई पूछ ले और हम गुस्से में उसको जवाब दे, ये कौन से अखलाक है, हमें यहाँ पे कौन से अखलाक बताए जा रहे हैं और हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में क्या अखलाक है बताएं। लोग हमसे डर डर के यानी जरा दूर दूर रहें कि भाई इससे बात कर ली अल्लाह जाने कुछ सुनने को ही ना पड़ जाए, कुछ कह देगी कोई तकलीफ दे बात कह देगी या कोई कुछ और मेरे सर पड़ जाएगी, तो इससे भाई दूर दूर ही रहो, तो सोच लें कि फिर हमारे क्या अखलाक होंगे। लोग हमारा फोन उठाने से डरे, अगर कोई हमारे रिश्तेदार हैं तो वो हमसे बात करने से डरे, वो हमारी हमारी शान में कोई गुस्ताखी ना हो जाए इससे डरते रहें, क्या जी इनकी शान में ना गुस्ताखी होते, पहले कार्ड इनको भेजो, पहले इनको इनवाइट कर लो, पहले इनको मना लो, पहले इनसे बात कर लो, पहले इनसे मशवरा कर लो, ये अगर नाराज हो गए तो हमारे तो सर को पड़ जाएंगे। ये है हमारे अखलाक आज के, ये तो बहुत आगे की बात है, हम तो पहले उस पे तो आए एक यानी जो एक एक लेवल एक बॉर्डर लाइन है उस पे तो आ जाए, हम तो उससे भी बहुत आगे निकले हैं। और अगर हम दीन का काम शुरू कर दें फिर तो हम कहते हैं हमें तो फ्री टिकट मिल गया, अब जिसको मर्जी हम वो लताड़ेंगे कि लोगों में बैठ बैठ के लोगों की बातें, उसकी बेइज्जतियां, उसको डांट दिया, उसको कर दिया, क्योंकि ये तो अब मेरे स्टूडेंट हैं या मेरे क्या है, ये कोई मतलब मेरे नौकर बन गए हैं या क्या है, ये अखलाक नहीं है। ये कहाँ अखलाक मिलते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में, कहीं बताएं तो, कि आपने काफरों के साथ भी ऐसा सलूक किया है, मुसलमान तो छोड़े आपने काफरों के साथ भी किया है, जिन्होंने आपके साथ बुरा किया कि उनके साथ तो चलो ठीक था ना, जायज था करना, उनके साथ भी किया, हमने अखलाक सीखने किससे, मुझसे आपसे नहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो अगर हमारे इस किस्म के अखलाक है ना कि लोग थोड़े हमसे केयरफुल है, तो बस समझ जाएं कि बस मैं किसी मेरा हाल नहीं है कुछ भी, इसको अपनी बड़ी होशियारी ना समझें और बड़ा इसके ऊपर फखर ना करेंगे, देखा है ना मैं कैसी, मैं ऐसा रोब रखा हुआ ना बस, सारे खानदान में मेरा रोब है, मजाले को बात कर ले, नहीं तो ये आपकी बड़ी बहुत बड़ाई बड़ाई नहीं है। कई लोग हैं भाई, लोग उनसे वाकई पनाह मांगते हैं, इसकी ना जुबान खुलवाओ, इसकी तो जुबान खुल गई तो बंद ही नहीं होनी, कहीं हम ऐसे तो नहीं है। तो अल्लाह ताला हमें माफ करे कि हम इस इन लोगों में ना शामिल हो। कहाँ ये अखलाक, कहाँ वो अखलाक, दूर दूर तक नहीं कोई कंपैरिजन। ये तो ये जो आयत है ना, तो बहुत ऊंची बात है, बहुत ऊंची बात है। हम तो अभी पासिंग मार्क्स वाले भी नहीं बने। तो प्लीज अपनी इस चीज के ऊपर खास तौर पे गौर करें, क्योंकि जो अल्लाह की तरफ दावत देने वाला है उसके लिए तो ये ज्यादा जरूरी है। वरना तो लोग ठीक है उसको सताएंगे, वो कहेगा अच्छा मुझे एक सताया, मैं भी नहीं आइंदा कभी इसे बात करनी, मैंने भी नहीं इसका ये करना, मैं तो इससे अब बस कता ताल्लुक ही हो गया, और इसने मेरे साथ ये किया तो मैं भी जरा इसको सुना के आती हूँ। नहीं, इस रास्ते में तो सुननी भी पड़ेंगी, इस रास्ते में तो बड़ी बड़ी बातें लोग करेंगे, और खासतौर पर जो दीन की तरफ आ जाते हैं उनके ऊपर बहुत बहुत बातें छांटते हैं लोग, उनको तो माइक्रोस्कोप से देखते हैं कि इनकी कोई बात नजर आ जाए हमें। अच्छा कोई कोई कहीं कहीं ना कहीं से हम खींच तान के इनकी कोई बात निकाल ही ले, तो लोग निकालेंगे ऐसे, लोग करेंगे ऐसे, फिर उसके बाद क्या करें हम, लड़ना ही शुरू हो जाए उनसे। हम भी उनको बताएं कि अच्छा तुमने हमें ये समझा, ठीक है अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं क्या, ये नहीं करना। लोग आए करें कहेंगे, सबर कर ले। कभी कभी लोग कहते हैं आप ये कहें, उनको जवाब दें, उनको ऐसे करें, नहीं करना ये। अगर अच्छा नहीं कर सकते तो खामोशी हो जाओ और सबर कर लो। जरूरी है कि हमने हर बात का जवाब दे के आना है उसको घर तक पहुंचा के, तब तक हमें चैन नहीं। इसी तरह जब इसी को हम प्रैक्टिकली अपने घरों में अप्लाई करेंगे, बाहर जाने का तो अभी गली गली हम फिर नहीं रहे, हम अपने घरों में भी इसको जब अप्लाई करेंगे तुम्हारे घर जन्नत बन जाएंगे। वरना वो ही शोहर कहेंगे कि क्या पढ़ती हैं दीन, क्या दीन पढ़ा तुमने तुम्हारे, तो एक वो कहते हैं तो हम दुआ आगे से सुनाते हैं, हम दीन पढ़ना शुरू हो गए ना लिहाजा अब हम ये बताएंगे तुम्हें, अब वो हदीसें सुनाएंगे, हम वो कुरान की आयतें सुनाएंगे। ये नहीं तरीका। पहले अमली तौर पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल था उस सोसाइटी के अंदर, पहले आपने अपने अमल से अपने किरदार से उनको मुतासिर किया हुआ था कि वो सादिक और अमीन कहलाते थे। हम आज ही अपने अमल बदल लें कि भाई घर वाले भी कहें जब से भाई इसने कुरान पढ़ना शुरू किया ना वैसे इसमें बड़ी चेंज आ गई, पहले तो ये ऐसे करती थी, इस बात के ऊपर आग बगोला हो जाती थी, अब देखो कितना भी इसको कह देंगे, इतनी सबर से काम लेती, फिर पता चले कि हमने वाकई कुरान पढ़ा। ये क्या कि कुरान की आयतें कोट करते रहना, हदीसें कोट करते रहना और खुद को आलिमा समझना कि मैंने बहुत पढ़ लिया, इससे हम मुतासिर करेंगे लोगों को, इससे वो कभी नहीं आएंगे इस तरफ। हमारी अमली दावत की जरूरत है, और आज सोसाइटी में भी हमारी अमली दावत की जरूरत है। हम पंफलेट लेके खड़े हो जाएं कहीं, हम बूथ लगा लें कहीं, हम बड़े बड़े ये बैनर लगा दें, बिलबोर्ड्स लगा दें, उससे नहीं। हमारी अमली दावत इस मुआशरे के अंदर कि मैं अमल कैसा करके दिखाती हूँ, वो देख के पहचान लें कि ये वाकई भाई मुसलमान है, ये तो कभी झूठ नहीं बोलेगा, बड़ा ईमानदार है। नफरत ना करें उनसे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं भी काफरों से गुस्से नहीं किए, ये काफिर हैं इनके तो ऐसे है कि भाई आपको कहीं हदीसें मिल रही हो कि सहाबा की कंपनी में बैठे और आप बता रहे हो तो वो काफिर ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, जब तुम उनको मिलो तो ऐसे करना, तुम ऐसे ही उनको कहना, वो देखो कितना बुरा है, वो देखो कितना बुरा है, ऐसी तो कहीं भी नहीं मिल रही, ये तो हमें हदीसें नहीं मिलते। हाँ ये है कि उनसे हमदर्दी करो कि देखो ये किस तरह आग की तरफ जा रहे हैं, ये काबिले रहम है, नफरतें और उसे करने से वो आएंगे, तो वो बुरा भी करें तो तब भी तुमने अच्छा करना। अल्लाहु अकबर। तो ये एक गैर मुस्लिम सोसाइटी में भी आपके लिए, एक मुस्लिम सोसाइटी में भी आपके लिए, जहां पे लोग कहें ये कुरान वाले हैं वहां पे भी हमारे लिए, जहां पे हमारे घरों के अंदर हमारे इर्द गिर्द वाले हमें देखें तो पता चले उनको कि ये कुरान वाले हैं, ये अल्लाह वाले हैं, ये अल्लाह की तरफ दावत देने वाले हैं। हम तो दोस्तों को भी दुश्मन बना लेते हैं, कहाँ दुश्मनों को दोस्त बनाना। तो ये तो वो बहुत बड़ी बात है कि हम ऐसा किरदार दिखाएं कि दुश्मन भी दोस्त बन जाए, लेकिन ये हर एक के करने का हौसला नहीं है इसमें, इस काम को करने का। वमा युलक्काहा इल्लल्लज़ीना सबरू, नहीं ये डाला जाता मगर उन लोगों पर जिन्होंने सबर किया। यानी इसमें बड़ी बर्दाश्त चाहिए। वो ही लोग कर सकते हैं जो बर्दाश्त कर ले, किसी की बात को बर्दाश्त कर लिया, किसी के रवैये को बर्दाश्त कर लिया, घर में किसी ने कुछ कह दिया तुम बड़ी ऐसे बन गई, बर्दाश्त कर लिया, सब्र कर लिया कि मेरी कोई इज्जत नहीं जाती, घटती नहीं है, कुछ नहीं होता, अगर किसी ने कह भी दिया तो कोई नहीं, मैं अच्छाई के साथ ही जवाब दूंगी। ये सब्र वालों का काम है, ये उन थोड़े दिलों का काम नहीं है जो कोई एक किसी ने बात की तो वो ऐसे हैं कि जैसे गर्म तवे पे उन्होंने पैर रखे हुए वो फौरन उछलने शुरू हो गए, वो उनका काम नहीं है बेसब्रों का। और फिर शैतान जहन में डालता है, हाय हाय तू तो क्या तेरी वैल्यू रह गई, वो तुझे इतना कुछ कह गई, इतनी बातें सुना दी और तुम आगे से बस मिसकीन बन के बैठी रही, क्या समझेंगे वो तुम्हें, वो तो कहेंगे कि आइंदा भी इसके सर पे जूते मारो, तो तुम बस यही इसी काबिल हो तुम। अल्लाह ताला ने फरमाया तुम लूजर नहीं हो, तुम विनर हो। वमा युलक्काहा इल्ला ज़ू हज़्ज़िन अज़ीम, ये नहीं डाला जाता मगर बड़े नसीबे वालों को, उनके अंदर ये चीज डाली जाती है, ये अल्लाह की तरफ से उनको नसीब होती है जो बड़े खुशकिस्मत होते हैं कि वो बुराई का जवाब भलाई से दे ले। तो ये तो तुम्हारी खुशकिस्मत ही है। शैतान कहता है नहीं नहीं, तुम मारे गए, तुम कमजोर हो गए, तुम्हें कोई कुछ नहीं समझेगा, तुम किसी से कम हो। और जब ऐसे वसवास आए तो फिर क्या तुम करो, अब तुम नहीं उसका मुकाबला कर सकते क्योंकि ये शैतानी वसवास होते हैं, तो फिर क्या करो। वह इम्मा यंजा गन्ना का मिन शैतान, जब अगर वसवसा डाले तुझको शैतान, नज़्गुन कोई वसवसा, तो तुम क्या करो, फस्ताइद बिल्ला, अल्लाह की पनाह में आ जाओ, अल्लाह तुम्हें पनाह देने को तैयार है, उसकी पनाह में आके छुप जाओगे ना, तो फिर शैतान नहीं कुछ कर सकता तुम्हारा। तो फौरन फिर क्या करो, औज़ु बिल्ला पढ़ो, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला पढ़ो, अल्लाह की पनाह मांग लो अल्लाह से कि अल्लाह मैं नहीं मुकाबला कर सकती, मेरे वसवसे इतने आ रहे हैं। कभी कभी पता है ये भी होता है, जो दाई लल्लाह होता है ना उसके जहन के अंदर शैतान ऐसे वसवसे डालता है, बस मैं तो अब इतनी कामयाब हो गई, इतने लोग हैं, इतनी मेरी फॉलोइंग हो गई, इतना मेरा ये हो गया, सारी दुनिया में हमारा चर्चा हो गया, ऐसा हो गया, वो ये जो फखर और तकबर की बातें हैं ये भी शैतान जहन में डालता है। इस उस वक्त भी औज़ु बिल्लाह पढ़ो, कितने भी तुम ऊपर हो जाओ, कितने भी तुम ऊपर हो जाओ, लेकिन तुम भी फिसल सकते हो, तुम्हारे पर भी शैतान हमले करता है। फिर इसी तरह बाज लोग इतनी बड़ी बड़ी डींगे मारेंगे, हम ये हमारे खानदान, ये यानी दीन पढ़ाने वाले ही, कि जैसे कि दुनिया का सबसे परफेक्ट यही है, और इनके खानदान और अपने किसी बच्चे की, अपने किसी बड़े की भी बात कोट करेंगे तो ऐसे लगेगा कि जैसे अल्लाह ये तो पता नहीं नबियों के घरानों से ताल्लुक रखते हैं, इतने परफेक्ट है वो, ऐसे परफेक्ट तो नबियों के घराने भी नहीं थे। देखिए ना, लूत अलैहिस्सलाम देख लें, नूह अलैहिस्सलाम देख लें, इब्राहिम अलैहिस्सलाम देख लें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने चचा थे, तो देखिए इतने परफेक्शन तो कहीं पे भी नहीं है जितनी कि इनके घरों में मिल जाती है। बस हर एक कोई पैगंबराना ही सिफात रखता है कि हम तो ऐसे, हम तो ये, वो ये भी शैतानी वसवास है। तुम कितने भी बन जाओ, तुम जो भी कर लो, तुम दाई लल्ला भी बन जाओ, तुम आमले साले भी करो, फिर भी शैतान तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। तो तुम्हें जब वो कोई ऐसे वसवसे डाले अपनी बड़ाई की बातें, या ये लोग मुझे इज्जत दें, अब तो मैं इज्जत के काबिल हो गई हूँ, अब तो मैं इतनी बड़ी चीज बन गई हूँ, अब तो इनको मेरी खिदमत करनी चाहिए, अब तो इनको मेरे आगे पीछे होना चाहिए, ये भी शैतान वसवसे डालता है। ये दाइयाने दीन के ऊपर तो ज्यादा हमले करता है। तो अल्लाह की पनाह में आ जाए, इन्नहु वस्समीउल अलीम, वो सुनने वाला भी है, वो जानता भी है, ये तुम्हें तुम्हारे ऊपर जो शैतान हमले कर रहा है वो उनको भी जानता है, और जो वो सुन रहा है तुम क्या कह रहे हो। ये चीज अगर औज़ु बिल्लाह का आप जहन में रखें, बाज दफा तो लोग ये कह देते नहीं नहीं शैतान नहीं कोई, तो शैतान का क्या कसूर है, असल में तो इसका अपना कसूर है। नहीं, उस वक्त भी दूसरे को कहो कि आप औज़ु बिल्लाह पढ़ें, वाकई शैतानी हमले होते हैं और ये बरहक बात है। तो औज़ु बिल्लाह हमारी पनाह है शैतानी वसवसों के मुकाबले में, तो इसके बगैर नहीं हम बच सकते। जब हम ये पढ़ लेते समझ ले हम एक किले में आ गए जहां से हमने दुश्मन से पनाह ले ली। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए रोज़े की हालत में, हम सब की दुआ है कि अल्लाह ये जो सिफात है दाई अल्लाह की, अल्लाह ये हमारे अंदर पैदा फरमा दे और हमारी बुराइयों को चुन चुन के हमारे अंदर से निकाल दे, हमें उनसे नफरत दे दे और उनको छोड़ना आसान कर दे, और नेकियों का करना हमारे लिए आसान कर दे, और उनके रास्तों की रुकावटें दूर कर दे। अल्लाह ताला ने उन लोगों में शामिल फरमाए जिनके लिए फरिश्ते उतरते हैं, और फरिश्ते उनके औलिया होते हैं दुनिया की जिंदगी में भी और आखरत में भी। سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اس کی تلاوت سنیے.
وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين ايديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. ذلك جزاء أعداء الله النار. ذلك جزاء أعداء جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم.